हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पुकारो सब लोग, पुकारो पुकारो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय हो गोपाल, जय गोपाल, जय गोविंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की श्री चंद्रभागा देवी की श्री चक्र तीर्थ धाम की श्री गोमती गंगा की निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। सब लोग एकदम जोर से बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा। तो आज के इस 28 दिसंबर के इस पवित्र संध्या में चंद्रभागा देवी के मंदिर में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो ये जो मंदिर है, आपने जो जांबवान की कलकथा सुनी ना, जिसमें भगवान समंतक मणि के खोज में उस गुफा में गए थे और वहाँ पर बहुत लोग साथ में गए थे उनके, और भगवान ने सब लोगों को गुफा के बाहर खड़ा कर दिया कि आप रुको मैं जाके आता हूँ। लेकिन 14 दिन के बाद भी भगवान बाहर नहीं आए, तो जो बाहर लोग थे वो डर गए और लौट के आए। वो लौट के आए तो सब द्वारकावासी देखो कितना कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब सच है क्या, ये सब कहानी अच्छी है, लेकिन लॉजिकल दृष्टि से सोचा भी जाए तो आप सोच सकते हैं कि जांबवान की गुफा जंगल में थी बहुत दूर, फिर ये लोग लौट के आए, ये भी द्वारका में है ना, आज भी द्वारका में ही तो है, और यहाँ पर आए वो। तो ऐसा नहीं कि ये कहीं और है, द्वारका कहीं और है और जांबवान की गुफा कहीं और है, ये द्वारका में ही है। तो यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की। एक्चुअली पहले सब लोग चिंतित हो गए, वसुदेव देवकी बलराम जी, फिर नारद मुनि आए, उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप चंद्रभागा देवी की पूजा करो ताकि भगवान जल्दी लौट के आए। उसके 14 दिन के बाद भगवान लौट के आए, जब से वहाँ निकले वहाँ से वो लोग। और जब यहाँ पर पूजन कर रहे थे, पूजन किया उन्होंने और देवी को प्रार्थना किया, उसी समय भगवान द्वारका में प्रवेश किए। वो भी अकेले नहीं प्रवेश किए, समंतक मणि और जम्बुवती देवी के साथ प्रवेश किए। सब लोगों ने खुशियाँ मनाई। तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में ऐसा बताया गया है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में लिखा है कामैस्तैत्तैर ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान स्वयं बोलते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा लोग तब करते हैं जब उनको काम वासना होती है, इंद्रिय भोग की इच्छा होती है, उस भोग में वश होकर ऋतज्ञाना मतलब उस भोग में, उस भोग लालसा में जब वो इतने वश हो जाते हैं कि उनका ज्ञान जो है हृदय का सब नष्ट हो जाता है, दे लूज देयर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। ऐसे ऋतज्ञाना ज्ञानहीन अवस्था में वो देवताओं के पास जाके मत्था टेकते हैं, करो कुछ करो हमारे लिए, अच्छी पत्नी दो, अच्छा पैसा दो, प्रमोशन होना चाहिए, कुछ करो हमारे लिए, ये लो चार केले लो खा सकते हो लेकिन मेरा प्रमोशन कर दो। है ना, हमेशा ऐसा होता है ना, एक एक नारियल होता है, एक 6 केले होते हैं, 1.25 किलो पेड़ा होता है, 2-4 फूल होते हैं, लो भाई बोलते मेरे को अच्छा फ्लैट दो 1.5 करोड़ का। क्या इसका मतलब है ना, ऐसा कुछ वो टिचकी कुछ मार देते हैं और बोलते फ्लैट दो। इस इज हाउ इट इज एक्चुअली। देवी पे या देवता पे कुछ प्रेम नहीं होता है। हमारे बचपन में हमारा घर सिद्धि विनायक के पास में था, हे मंगलवार को इतनी लाइन लगती थी उधर, तो मंदिर भी वो छोटा था। एक दिन किसी का लॉटरी लग गया, उसके बाद में जो भीड़ बढ़ी, यहाँ तक कि जब अमिताभ बच्चन का पेट में कुछ हो गया था ना बचपन में, बचपन में हमारे बचपन में, उनके बचपन में नहीं, उस पेट में कुछ काँच घुस गया था उनका, मरने वाले थे वो। तो उस समय एक व्यक्ति गुजरात से उल्टा चल के सिद्धि विनायक में आया। कैन यू इमेजिन दिस, गुजरात से। Still can't believe this actually. It's too difficult to believe. उल्टा चल के आया वो एक व्रत के भाव से। लेकिन एक ना एक दिन तो उसकी मृत्यु होगी ना, कि वो उल्टा चल के इसलिए वो इधर जीते ही रहेंगे। हाँ, 150 साल 200 साल, एक एक कदम के लिए 1-1 साल गुजरात से। ऐसा नहीं होता है ना। तो लोग समझते नहीं है कि देवी देवता जो होते हैं ना भगवान के बड़े भक्त होते हैं, वो बड़े श्रेष्ठ भक्त होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई बेकार वस्तु है, बड़े महान लोग हैं वो, भगवान के परम भक्त हैं। भगवान इतना उन पर श्रद्धा रखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शक्ति देते हैं वो। वो कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे पास आएंगे भौतिक वासना लेकर आएंगे, दे दो उनको, तथास्तु करो, एक बार मन भर लेने दो उनको, उनको पता चलने दो कि जो भी आप दे रहे हो वो टिकने वाला नहीं कुछ उनके साथ में, मृत्यु आएगी तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मृत्यु का इंतजार क्यों करना पड़ेगा, जीवन में ही खमत हो जाएगा। हमने तो कितने बड़े बड़े अमीरों को गरीब होते हुए देखा है ऐसी जीवन में। तो जरूरी नहीं कि मृत्यु के समय ही सब कुछ छीना जाएगा, तब तक तो एंजॉय कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, वो बीच में भी चला जाता है। और वो जो आप मांग रहे हो वो मिल भी जाता है फिर भी सुख नहीं मिलता है। समंतक मणि मिल गया ना, उसके बाद में क्या हुआ, सुख मिला क्या? सोना जरूर मिला, लेकिन सोने के बाद सुख मिला कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। तो वैसे सब चीज़ें देवी देवताओं के पूजन करने से प्राप्त होती है। भगवान भी जानते हैं, देवता लोग भी जानते हैं, सिद्धि विनायक अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लाइन में जो खड़े हैं ना इधर मंगलवार के दिन हजारों लोग खड़े हैं, एक भी व्यक्ति मुझको चाहता नहीं है, जानते हैं वो, एक भी व्यक्ति मुझ पर प्रेम नहीं करता है, हर एक व्यक्ति केवल खुद पर प्रेम करता है और खुद के लिए लिस्ट लेकर आया है। और अरे अजीब बात, ऐसे हर मंगलवार नई लिस्ट, ऐसा नहीं कि भाई वही चीज़ मांग रहे हैं बार बार, हर मंगलवार का लिस्ट मॉडिफाई एडिट अपडेट होती है और हर मंगलवार नए नए केले आते हैं। लेकिन कई बार इच्छा पूर्ति करने के बाद भी इच्छाओं का लिस्ट समाप्त नहीं होती है,
ये सबसे बड़ा गड़बड़ है इसके अंदर। एक इच्छा खत्म हो गई, दूसरी इच्छा, दूसरी हो गया तीसरी। अरे वो जो कन्या है इस पर मेरा इतना प्रेम है, मैं मर जाऊंगा अगर वो नहीं मिलेगी तो। वो मिल जाती है, अच्छा सब कुछ चलता है, उसके बाद किसी और पर दिल जाता है, फिर वो उसके लिए प्रार्थना करता है। वो क्या हुआ उसका, मरने वाले थे उसका क्या हुआ? वो तो ठीक है प्रभु जी, अभी नया अप्लीकेशन दे रहा हूँ, उसका पूरा करो। ये सब हमारी कहानी बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हमारा मन भी ऐसा ही है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़। तो यहाँ पर जो द्वारकावासियों ने देवी की पूजा की है वो किसी भी स्वार्थ से नहीं की थी, वो कृष्ण जल्दी आने चाहिए, हम उनके बिना रह नहीं सकते, वो बहुत दिन हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। गोपियों ने भी कात्यायनी व्रत किया था, कार्तिक पूर्णिमा समाप्त होने के बाद एक महीने के लिए ठंडे पानी में स्नान करके भोर के समय दिन भर केवल हविष्य खान करके, हविष्य पान करके उन्होंने बहुत कर्रा और कड़क व्रत किया था। और कार्तिक के बाद एक महीना होने के बाद में जो अगली पूर्णिमा आई मार्गशीर्ष वाली, उसमें भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनको स्वीकार किया, तो भगवान के लिए व्रत किया उन्होंने। और नंद महाराज भी नरसिंह भगवान की पूजा करते थे कृष्ण की सुरक्षा करने के लिए, कृष्ण की सुरक्षा के लिए गाय का पूजन हमेशा करते थे, कृष्ण की सुरक्षा के लिए, कृष्ण के आनंदित जीवन के लिए। उसमें स्व कुछ नहीं है, खुद के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद में नारद मुनि ने फिर भगवान को ऐसे उपदेश किया कि यहाँ पर एक सिद्धि विनायक का मंदिर है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर है बहुत, लेकिन द्वारका में ही है, क्योंकि भगवान को समंतक मणि चोरी करने का कलंक लगा था ना, तो कलंक ये किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर सच में कलंक, सत्य में कलंक लगा है फिर भी उसका पश्चाताप या कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, और झूठ मूठ का लग गया है तो उसका भी शालन करना चाहिए। तो भगवान एक मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं आदर्श जीवन के लिए। तो नारद मुनि ने कहा कि सिद्धि विनायक के पास जाके आप पूजन कीजिए, आपका कलंक निकल जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि सिद्धि विनायक जी का पूजन किया तो उनका कलंक चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग सिद्धि विनायक के पास जाइए, सिद्धि विनायक के पास जरूर जाइए आप, और सिद्धि विनायक जी से मांगिए कि आप तो विघ्नहर्ता हो, हमारी भक्ति के जीवन में जो भी विघ्न आते हैं वो सब हटा दो। आप बुद्धि देवता हो, भगवान को पाने के लिए जो सद असद विवेक बुद्धि है वो हमको दे दो। जो मांगना है भगवान के विषय में मांग सकते हो। और आपको सबसे ये जानकर खुशी होगी कि जब आप खुद के लिए जब देवताओं के पास कुछ मांगते हो उससे अनंत बार उन्हें खुशी होती है जब हम कृष्ण के लिए कुछ मांगते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए भी विघ्नहर्ता बनने की शक्ति उनका है, उनके अंदर है। कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग में विघ्नहर्ता बनने की शक्ति भी उनके अंदर है। कृष्ण के मार्ग में जो बुद्धि आपको चाहिए वो बुद्धि देने की क्षमता भी उनके अंदर है, लेकिन मांगता तो कोई है नहीं ना, कोई एक विरला होता है जो मांगता है, वो केवल कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं, क्योंकि उनको वो जानकारी और ज्ञान होता है कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। मांगते तो सभी लोग हैं, अमीर लोग भी मांगते हैं, लेकिन मांगने की भी कला होती है और वो केवल ही वैष्णव ही जान सकता है जो कृष्ण का भक्त है, कि क्या मांगना चाहिए, किसकी इच्छा करनी चाहिए, किसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम रावण हैं सब लोग, जो राम के बिना सीता का भोग लेना चाहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि अगर मुझे लक्ष्मी चाहिए तो सबसे पहले नारायण की भक्ति करनी होगी, फिर लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी, उनको बुलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। जहाँ पर नारायण जी की सेवा चल रही है वहाँ पर अपने आप स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है। तो ये पवित्र सुंदर स्थान है जहाँ पर हम सब लोग भी, हमारे जीवन में श्री कृष्ण भगवान बहुत पहले दूर चले गए हैं, ये तो 14 दिन की बात थी द्वारकावासियों की, पता नहीं हमारे जीवन में तो कितने जन्मों के पहले निकल गए वो, मतलब हम निकल गए, वो निकलने गए, वो तो कीड़े मुकेड़े की ज़िंदगी में भी परमात्मा के रूप में साथ देते हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं। तो देवी से मांग सकते हैं आप कि हमें कृष्ण से मिला देना, उनके भक्तों से मिला देना, उनकी सेवा करने का मौका देना, उनकी सेवा करने के लिए अच्छी बुद्धि देना,
कि अच्छी सेवा कर सकें उनकी हम। कभी कभी क्या होता है ना, सेवा करने के नाम से हम लोग किसी को कष्ट देते हैं बहुत। एक पिताजी थे, उनको दो बच्चे थे, दो बच्चों का झगड़ा था, तो दोनों बच्चे पिताजी का पैर का मालिश करते थे। जानते हैं ना आपका पैर, तो वो जिस हिस्से में खुद का पैर मालिश कर रहे उधर अच्छा मालिश करते थे, बीच में जाके दूसरे पैर को चिमटा निकालते थे, ताकि पिताजी को आंखें बंद है, पता है कि ये जो सुरेश है वो बाएं पैर को दबा रहा है और वो बाएं पैर में चिमटा भी निकाल रहा है, ताकि सुरेश पर पिताजी को गुस्सा आ जाए। इसलिए जो महेश दाहिने पैर पे मसाज कर रहा है, उसके पैर में बीच में सुरेश चिमटा निकालता है। इस प्रकार की सेवा हम लोग दुनिया में करते हैं। सेवा कर रहे हैं किस किस के लिए, लेकिन स्वार्थ का उसमें बीच में इतना मिक्स कर देते हैं कि सेवा जिसकी कर रहे हैं उसको भी कष्ट देते हैं। तो वैसा सेवा हमको नहीं करना है, हमको भगवान की सेवा बड़े हृदय से, उनको प्रसन्नता मिले, चाहे मुझे कष्ट मिले उनको सुख मिले, ऐसी सेवा करनी चाहिए। एनीवेज इतना सुंदर समय है, भक्तों का संग है, सब लोग धाम की मज रज में बैठे हैं। कहते हैं इस धाम की रज में सारे विश्व के तीर्थ समाये हुए हैं, जिसमें आप इतने आराम से बैठे हो। मुंबई में बैठेंगे ऐसे रास्ते में? नहीं बैठेंगे। धाम की महिमा है, धाम में बिना संकोच नम्रता से जब हम रज में बैठते हैं तो जीवन की परमोच्च प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सब भूल जाओ कि हम कौन हैं, डॉक्टर है, धनी है, सुंदर है, प्रभाव वाले हैं, सब चीज़ भूल जाओ, एक नम्र सेवक बन के आ जाओ। एक नम्र सेवक बन के आएंगे तो सारे जो दरवाजे हैं ना कृपा वाले, वो सब खुल जाएंगे हमारे लिए। जितने अहंकार के टोपियां पहन के आएंगे उतने दरवाजे बंद होते जाएंगे, जितने अहंकार के टोपियां उतारते जाएंगे उतने एक एक दरवाजे सब दरवाजे खुलते जाएंगे। भगवान अपने आप को अर्पण करेंगे हमको। जब हमारे ऑफिस के चेयर में बैठते हैं तुरंत हमें अनुभूति होती है कि मैं फलाने फलाना अधिकारी हूँ इस संस्था का, ये मेरा अधिकार है, ये मैं कर सकता हूँ। तुरंत वो कुर्सी आपको एहसास दिलाएगी कि मैं कुछ हूँ। देखो छोड़कर जब हम धाम में आते हैं तो यहाँ पर कोई कुर्सी नहीं किसी के लिए, कुर्सी केवल भगवान को है। हम सब लोगों के चरणों में बैठते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं, उनके चरणों में आश्रय मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। संत लोग तो कहते हैं कि वास्तव रूप में धाम में एक भिक्षुक बनकर आना चाहिए, लेकिन भिक्षुक का नाम सुनते ही हमारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अब मैं भिक्षुक हूँ, भिखारी हूँ, मैं तो भिखारी नहीं हूँ, तो अच्छा आदमी हूँ, मेरे पास धन भी है, मेरे पास घर भी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, मैं भिखारी कैसे बन सकता हूँ। लेकिन भिक्षुक आपको हृदय से बनना है भगवान के सामने, क्योंकि भगवान ने हमको कैसे भेजा था, बिल्कुल नग्न रूप में भेजा था, कुछ भी हमारे पास उसमें था नहीं उस समय। और जब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वैसे ही जाएंगे जैसे आए थे। तो हमेशा हम याचक ही रहे हैं, उन्होंने दिया इसलिए कुछ पहना हुआ है, कुछ जेब में है अभी। जब वहाँ से जाने को बोलेंगे तो बोलेंगे प्रभु जरा मोबाइल लेके जाऊँ क्या? तो बोले नहीं सर सॉरी, मोबाइल वोबाइल कुछ लेके जा सकते नहीं, कुछ 10-5 रुपये रास्ते में लगेंगे पानी वानी पीने के लिए, नहीं नहीं वो भी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं ले सकते आप, रास्ता में लगेंगे वो प्यास लगेगी। हमने सुना है रास्ते में बहुत कुत्ते काटते हैं उधर, जब यमदूत लेके जाते हैं तो बहुत पसीना आता है, पानी लगता है, तो थोड़ा बहुत लगेगा ना साथ में। बोले नहीं नहीं मुमकिन नहीं। तो याचक तो हम थे हैं और रहेंगे, खाली बीच में भूल जाते हैं कि हम याचक हैं, मालिक समझ रखते हैं अपने आप को, फिर ठोकरे खाते हैं, फिर आदमी अनुभूति होती है मृत्यु के समय कि हम फिर याचक हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, फिर वहाँ से दूसरे बॉडी में, फिर वही याचकता, फिर वही मालिकता, फिर याचकता स्वामित्व, फिर मालिकता, फिर वही। ये चक्र में हम लोग कितने पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से घूम रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जा रहे हैं, माँ का कष्ट भोग रहे हैं, माँ के कष्ट गर्भ से बाहर आ रहे हैं फिर कष्ट भोग रहे हैं, फिर रो रहे हैं, फिर तड़प रहे हैं, फिर मांग रहे हैं फिर नहीं मिलता है, फिर मांग रहे हैं फिर नहीं मिलता है, फिर कुछ मिल जाता है फिर नहीं मिलता है। इसके चक्कर में जाने कितने जन्म निकल जाते हैं। अभी अगर हमको अनुभूति हो गई है तो अभी देवी हो, कृष्ण भगवान हो या और कोई संत हो, सबके चरणों में यही मांग करनी चाहिए। बस इस बार हमें अभी गलती नहीं करना है और इस बार हमें ठाकुर जी के पास ही जाना है, बस एकाग्र चित्त होकर। ऐसा नहीं कि 2016 समाप्त हो रहा है और 2017 के 1 जनवरी को मैंने संकल्प किया है कि अभी इस साल में केवल ठाकुर जी का चिंतन करूँगा, लेकिन फिर 5 जनवरी को लगता है कि कुछ और करना चाहिए। फिर 26 जनवरी को लगता है कि नहीं, अभी तो पार्टी होनी चाहिए, देश का तो गणतंत्र दिवस है आज। इस तरह से हम जो संकल्प करते हैं वो भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। उस संकल्प जो हमने जीवन में किया है उसको याद रखने के लिए हमें संतों की, भक्तों की, संघ की जरूरत होती है, जो उस बार बार हमको उसकी याद दिलाते हैं। प्रभु आपने वादा किया था छोला माला करने का गुरु जी के सामने, प्रभु पता है उस समय कितने दिन लोग थे वहाँ पर, आपने खड़े होकर ऐलान किया था यज्ञ के सामने कि हम छोला माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, नम्र बनकर रहेंगे, प्रसाद खाएंगे, केवल बाहर कुछ नहीं खाएंगे, केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही बाद में खाएंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, धाम में जाएंगे बीच बीच में, तुलसी की सेवा करेंगे, विग्रहों की पूजा करेंगे, सब वादा करते हैं हम लोग, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। जब तक दीक्षा हमारी है तब तक हमको इतना एंग्जाइटी रहता है कि दीक्षा होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी कि नहीं, तब तक हम बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं, लेकिन एक बार हो गई, फिर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर लगता है कि ठीक है थोड़ी माला कल कर लेंगे, उसमें क्या है, नो प्रॉब्लम। कल भी तो है ना, थोड़ी कल मरने वाले हम, आज भी हैं कल भी रहेंगे, आज की माला कर लेंगे पूरी, फिर कल कहेंगे परसों भी तो है ना, थोड़ी मरने वाले आए करेंगे, थोड़ी छोड़ने वाले हैं। ऐसे करते करते फिर हमारा जीवन जो है वो गुरु जी की छत्र छाया से थोड़ी दूर, फिर थोड़ी दूर, फिर थोड़ी और दूर, फिर थोड़ी और दूर, फिर कोसों मील दूर हो जाते हैं हम लोग, पता भी नहीं चलता है हमें कैसे होगा, वापस आने में बहुत देर लगती है, और वापस आते आते अगर जीवन की नौका डूब गई तो फिर क्या होगा। तो इसलिए एकाग्र निश्चय कीजिए। वैसे हमारा नया साल 1 जनवरी को नहीं है बाय द वे, हमारा गुड़ी पाड़वा को है, तो उस समय के लिए तब तक वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी धाम में बैठे हो, अभी भगवान को संकल्प करो, विचार प्रार्थना करो कि मैं आपके चरणों में रखो। हाँ, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न भावा, ऐसा दान दो भगवान कि आपकी याद हमेशा बनी रहे, आपको हम कभी ना भूले। रूप गोस्वामी भी बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में, सबसे ऊंचा तत्व जो है, द हाइएस्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स भक्ति में जीवन में सर्वश्रेष्ठ, वो कौन सा तत्व है, स्मर्तव्यम सततम कृष्ण विस्मर्तव्यम न जातुचित। स्मर्तव्यम सततम कृष्णम यानी हे भगवान, हे कृष्ण आपकी याद हमेशा बनी रहनी चाहिए, सततम सदैव चिरंतन काल के लिए, और विस्मर्तव्यम न जातुचित कभी भी आपकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगे इसमें अलगता क्या है, एक ही तो बात है, दो बार क्यों बोल रहे हैं, लेकिन भगवान की याद करना और भगवान का न भूलना दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। सत्य बोलना और झूठ नहीं बोलना, ये दोनों बातें समझना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग इस पवित्र संध्या के बेला पर भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हमें भगवान की सदैव याद आती रहे, कभी भी कोई भी काम करते समय, विचार करते समय, सोते उठते जागते उनकी याद बनी रहे और उनकी विस्मृति ना हो, कभी भी भूल से भी उनको ना भूले, यह प्रार्थना कीजिए। अगर प्रामाणिकता से प्रार्थना करेंगे तो आपको कैसे याद दिलाना है और कैसे उनको आप नहीं भूलना चाहिए इसकी व्यवस्था वो करेंगे। लीव इट टू हिम। हरे कृष्णा। तो इसी जगह पर एक जगह है पोरबंदर, जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भगवान के भक्त थे सुदामा ब्राह्मण, जो भगवान के क्लासमेट थे गुरुकुल में, उन्होंने एक साथ गुरु जी की सेवा किया था और एक साथ लकड़ियाँ तोड़ी थी, विद्या अर्जन किया था, काफी प्रसंग उनके जीवन में आए गुरुकुल में। फिर भगवान गुरुकुल से चले गए, मथुरा से द्वारका आए, सुदाम अपने घर चले गए, उनका विवाह हुआ सुशीला से। लेकिन बड़े गरीब थे वो, लेकिन गरीब धन से थे, मन से नहीं थे, भक्ति से गरीब नहीं थे। बड़े श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के, इतने संतुष्ट थे वो। हालांकि भूख से उनका शरीर कांपता था ऐसा, हाइपोग्लाइसीमिया से, हाँ जैसे होता ना भूख खाने से क्या होता है, शुगर कम हो जाती है तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, वैसे कांपते थे। लेकिन फिर भी उस अवस्था में भगवान का नाम लेते थे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में भक्त थे एक, श्रीधर कोलवेचा, वो भी आधे पेट रहकर ऐसे भगवान को पुकारते थे। लोग उन पर चपाती फेंकते थे ऐसे, लो खा लो, भूख के मारे चिल्ला रहे हो, चुपचाप हो जाओ, हमको सोने दो। फिर भी वो पुकारते रहते भगवान को, क्योंकि वो भूख के मारे नहीं पुकारते थे भगवान को, तो प्रेम के मारे पुकारते थे। तो सुशीला देवी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उनको लगा मेरा पति गरीब है बेचारा, उसको वो कोसती नहीं थी कि तुम क्या नकाम निकम में हो, कमाते नहीं हो, ऐसा नहीं। उनको लगा दिल में से एक बार कि अरे इनका मित्र कृष्ण है, द्वारकाधीश है, इनको जाना चाहिए उनके पास, कुछ कृपा करेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। इनको इच्छा नहीं जाने की, उनको बोला क्यों मैं जाऊँ उनके पास मांगने के लिए, जो भी है उनका दिया हुआ है तो है नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। ठेवी ले अनंत तैसे चिरहावे, जैसे भगवान की इच्छा वैसे ही रहना है, संतुष्ट होकर रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट जीवन में मन की शुद्धि के लिए पता है क्या आवश्यक है, वो है संतुष्टि। मन जब संतुष्ट होता है तो सबसे पवित्र होता है, सेटिस्फाइड माइंड। दुनिया में जितनी समस्याएं आज है ना, वो असंतुष्ट मन की वजह से है। जब मन असंतुष्ट होता है तो फिर कुछ ना कुछ झगड़े वगड़े वाद विवाद ये सब होते रहता है, स्पर्धा ईर्ष्या सब असंतुष्ट मन के परिणाम हैं। तो सुदामा जी तो तैयार नहीं थे वैसे जाने के लिए, लेकिन पत्नी ने बहुत प्रेम से आग्रह किया आप जाओ। तो सुदामा जी तैयार हो गए, तो बोले कुछ है क्या मित्र के लिए देने के लिए, कुछ जान साथ में कुछ देना चाहिए। तो घर में कुछ नहीं था, तो पत्नी ने जाकर पड़ोसी से वो उधार में कुछ पोहे मांग लिए, और ये पुराने फटे से कपड़े में बांध लिए, डंडी को कोने में बांध दिया और चल पड़े। लेकिन पूरे सफ़र में कभी ये भी विचार नहीं किया कि अब मुझे कृष्ण से क्या मांगूँ और कैसे मांगूँ, वो क्या देंगे, कैसे लूँगा मैं, इसके बारे में विचार नहीं किया उन्होंने। उनके मन में कल एक विचार था कि मैं मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मेरा प्राणनाथ, मेरा परम प्रिय मित्र जो है उसको मैं मिलने जा रहा हूँ, कैसे होगा वो, कैसे हमारी मुलाकात होगी, कैसे मिलेंगे, क्या बातें करेंगे, इसी के विचार में चले। जैसे अक्रूर जी निकले थे कंस के आदेश के अनुसार भगवान को लाने के लिए वृंदावन से मथुरा के लिए, तो एक राक्षस एक दुष्ट व्यक्ति के सेवक बनकर जा रहे थे वो। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है कंस दुष्ट है, लेकिन मैं तो भगवान का भक्त हूँ, उस बारे में मुझे भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे, उनका संग मिलेगा, मेरी गाड़ी में बैठकर चलेंगे, वो कितना भाग्य है मेरा, कर रहा हूँ कंस के लिए, लेकिन बड़ा भाग्य उदय हो रहा है, ऐसा उनको लगा। तो रास्ते में केवल भगवान के विषय में ही चिंतन करते 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 वो वृंदावन चले गए। और जैसे ही वृंदावन आए तो उनको वृंदावन की भूमि में कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह दिखाई पड़े ऐसे, वो तुरंत रथ से उतर के लोटपोट हो गए उसके अंदर, हाँ रोल्ड इन द डस्ट वृंदावन भगवान की। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृंदावन में हमको ऐसे प्रवेश करना चाहिए, भगवान के गहरे चिंतन में, भगवान के भूमि पर लोटपोट होकर दंडवत प्रणाम करके प्रवेश करना चाहिए। तो उसी भाव से सुदामा निकल रहे हैं, द्वारका में पहुंचते हैं तो फटे पुराने कपड़े हैं, कहते हैं कि कपड़ा कम चिंदी ज़्यादा थी, हाँ छेद ज़्यादा थे उसके अंदर। तो द्वारपाल ने पूछा कौन हो तुम, तो कहते मैं कृष्ण का दोस्त हूँ। तो देखते उसको ऊपर से नीचे, वाह क्या दोस्त है कृष्ण का, है ना। कई बार को बड़े अफसर को मिलने के लिए ऐसे लोग बोल देते हैं कि अरे वो तो मुख्यमंत्री हमारे स्कूल में थे बचपन में। बोला अच्छा वाह वेरी गुड, फिर जरा पूछ के आता हूँ कौन से स्कूल में थे। तो ऐसे उन्होंने शंका किया उसके ऊपर, तो कहते हैं उन्होंने पुकारा उनको कन्हैया जी को। तो कन्हैया जी उस समय कुछ कथा में ऐसा था कि दरबार में बैठे थे, कुछ कथा में ऐसा था कि रुक्मिणी के घर में बैठे थे, महल में, वहां से भगवान भाग के आए, दौड़ के आए भगवान, कि मेरे बाल मित्र की आवाज आ रही है, दौड़ के आए भगवान और सबके सामने गले लगाया सुदामा को। द्वारपाल देखते रह गए, इतना फटीचर आदमी, फटे कपड़े पहने हुए, इतनी धूल लगी हुई, बालों में धूल है, सब में धूल है, क्या कुछ लगता ही नहीं कि भगवान के कभी मिला भी होगा ये भगवान को, दोस्ती की बात कर रहा है। और फिर क्या, द्वारकाधीश भगवान हमारे पूजनीय वंदनीय भगवान जो है वो आके गले लगा रहे हैं उसको, उनको जरा भी संकोच नहीं कि इसके शरीर में धूल है, कपड़े है, नहीं है, क्या है, लोग क्या कहेंगे, किसको गले मिल रहे हो। बड़े प्रेम से ऊपर से भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा को स्नान कराया। उधर ही सुदामा के आंखों से आंसू आ रहे हैं, भगवान के शरीर में गिर रहे हैं, भगवान के आंसू आ रहे हैं, सुदामा के शरीर पर गिर रहे हैं। सब देख रहे हैं, द्वारपाल देख रहे हैं, सब लोग जमा हो गए देख रहे हैं। फिर भगवान ने उसको हाथ कंधे में लेके ऐसे प्रेम से वहां से लेके रुक्मिणी के महल तक ले गए। वो रुक्मिणी भी देखकर हैरान हो गई, किसको लेके आया घर में, लेकिन समझ में आया कि अगर भगवान गले लगा रहे हैं तो मतलब विशेष व्यक्ति होगी। भगवान ने बताया मेरा दोस्त है ये, गुरुकुल का मित्र है मेरा, साथ में पढ़े हम लोग। तुरंत आदेश किया, जाओ आरती के सामान लेके आओ, पहले परात लेके आओ, लोटा लेके आओ, पानी लेके आओ। जिस बिस्तर पर, जिस शयन कक्ष में रुक्मिणी के साथ शयन करते थे भगवान, मतलब कितना प्राइवेट एरिया हो देखो आप, हाँ, जहाँ पर पति पत्नी सोते हैं, किसी को प्रवेश नहीं होता। दोस्त भी आएगा तो उसको बाहर बिठाते हैं, दीवान खाने में बिठाते हैं, वहीं पर सत्कार करते हैं। सीधे अंतपुर में ले गए अपने, और रुक्मिणी के साथ जहाँ शयन करते थे उसमें बिठाया उसको, और पैर धोए भगवान ने उसके। रुक्मिणी ने जल दिया, जल छोड़ती रही, वो पैर से मालिश किया पैर का अच्छी तरह से, धोए, और फिर जल होने के बाद में अपने पीताम्बर से उसके पैर पहुंचे, और वो जल लेकर उसका तीर्थ लिया उन्होंने, और फिर वो सर पे लिया अपने, फिर वो लेकर रुक्मिणी के सर पे भी दिया, सब सेविका आई उनके भी सर पे दिया। फिर रुक्मिणी भोजन करके, भोजन लेके आई, फल फूल लेके आई, कंदमूल लेके आई, भोजन लेके आई, और भगवान ने उनको प्रेम से खिलाया। उतने समय जब वो खा रहे थे तो रुक्मिणी जी उनको पंखा कर रही थी, भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी, भगवान की पटरानी, द्वारकाधीश की रानी, हाँ, एक गरीब भिखारी बेचारे ब्राह्मण को हवा दे रही है पंखा से। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बचपन की बातें की, कैसे हम जाते थे जंगल में, तो एक प्रसंग हुआ था उसमें बहुत लकड़ी तोड़ने गए थे तो बहुत बड़ा तूफान आया था, और उस तूफान में रात भर भगवान का हाथ पकड़ के सुदामा जंगल में भटकते रहे, कहाँ से जाना है पता नहीं। गुरु महाराज बड़े परेशान हो गए, अरे मेरे लिए तो ये लकड़ी तोड़ने गए थे और बेचारे संकट में फंस गए। गुरु महाराज घर छोड़ के ढूंढते ढूंढते जंगल में आए, सुबह मिले उनको। गुरु महाराज ने कहा मैं आपका ऋणी हूँ बहुत, कि आप दोनों ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया है, मेरे लकड़ी लाने के लिए आपने रात भर तूफान का सामना किया है भूखे प्यासे रहकर, याद जताई उन्होंने। फिर कुछ देर बाद, देर हो गई बहुत, तो भगवान ने बोला कि भाभी ने कुछ दिया होगा ना मेरे लिए, दे दो। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं, क्या लाऊं मैं, क्योंकि उनको संकोच हो रहा था कि इतने बड़े महल में भगवान रह रहे हैं, सोने के महल में, ऐसे तो महलों की लाइन लगी थी उधर, इतना बड़ा दिव्य विशाल द्वारका, अनेक सूर्य चमकते हुए, ऐसे सब दागिने लगे हुए सब जग, हस्ती दंत का फर्नीचर है घर में, सोने के फर्नीचर है, सोने का महल है, तो मेरा पोहा क्या मायने रखता है इसमें, क्या पोहे की कीमत है, राजा को जाके आप थोड़ा सा पोहा खिलाएंगे तो क्या होगा। तो वो संकोच कर रहे थे कि नहीं 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 कुछ नहीं लाया मैंने, कुछ नहीं लाया। ऊपर से और संकोच था कि 2-3 दिन से मैं चल के आ रहा हूँ इतना दूर से, शायद बिगड़ भी गए होंगे, क्या दूँ उनको मैं। तो भगवान कुछ नहीं, नहीं 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 ऐसे कैसे हो, कुछ तो है आपके पास, भगवान तो अंतर है, सब जानते हैं कि प्रेम से मेरे लिए पड़ोसी से मांग के कुछ लाया है उन्होंने, उनको चाहिए वो, आप नहीं देंगे तो भी चाहिए उनको। तो उन्होंने छीन के लिया उनसे, उनके डंडी से लगा हुआ जो पोटली थी उसको छीन के लिया उन्होंने, खोला उसको। इतना संकोच सुदामा को हो रहा था कि नहीं नहीं भगवान वो आपके लायक नहीं है, बहुत ही घटिया चीज है, कृपा करके आप उसको मत लीजिए। नहीं, सबके सामने खोल रहे और उसको एक मुट्ठी ले लिया, वो खा लिया उसको भगवान ने, और रोक रहे मत खाओ मत खाओ, दूसरा मुट्ठी लिया भगवान ने, दूसरा मुट्ठी खाया, एक मुट्ठी बच गई तो रुक्मिणी ने रोक लिया, अरे हमको भी थोड़ा रखो, इतना प्रेम का अमूल्य धन तुम खुद पा रहे हो, हमें भी, हमारे भी महल में बहुत लोग हैं, हम भी रहते हैं यहाँ पर, तो रोक लिया। और भी बताया कि इतने में से तो पूरा विश्व प्राप्त हो जाएगा उसको, क्योंकि तो भगवान ने कहा कि आज केवल मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा इस पोहा खाकर, आज मैं ये पोहा खा रहा हूं, पूरा विश्व में जितना निर्माण किया मैंने, सृष्टि जितना निर्माण किया है, उसमें जितने जीव है वो सब चराचर आज संतुष्ट हो जाएंगे, इतना प्रेम का भोजन पा रहा हूं मैं आज। ये हमारे भगवान है, हा? वो ये नहीं बोलते कि क्या तुम खिला रहे हो मुझे आज, क्या नमक नहीं, मीट नहीं, कुछ है नहीं, कैसा खिलाते हो, वो आपने दिया हुआ कोई कुछ खाते नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, उसमें जो भाव है उसको ग्रहण करते रहते हो, किस भाव से दे रहे हो आप। इसलिए उन्होंने विदुर जी के घर पे जाकर केले के छिलका खाए उन्होंने, और उसी समय उनको निमंत्रण था दुर्योधन के घर पे 56 भोग का, एकदम बढ़िया से बढ़िया श्रेष्ठ खाने का इंतजाम था, लेकिन वो त्याग दिया उन्होंने, बोले उसका पाप का कौन खाएगा, दुष्ट आदमी के भावना का खाना नहीं चाहिए कभी। आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी कई लोगों को आज देखा, वो सब सड़क पे कुछ भजी खा रहे थे, कुछ पूड़ी खा रहे थे, कुछ कुछ खा रहे थे, आप लोग सब लोग, हम लोग इतना मेहनत करके बिना लहसुन प्याज का बनाकर हमारे भक्त लोग भोग लगा रहे हैं और कुछ प्रसाद खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप रोड पे खा रहे हैं। हाँ, आपने सुना ना उधर द्वारका में, उधर बेट द्वारका में 4,000 यवनों की संख्या है, 5,000 जनसंख्या में 4,000 यवन है और 1,000 हिंदू है, तो सब वो यवनों की दुकान है जो गाय खाते हैं। इसलिए अगर आप भक्त बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखना इस बात का, आप कहाँ खाते हो और क्या खाते हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा आप खाते हो वैसा आपकी चेतना और मन बनता है, और जैसा आपका मन बनता है वैसे कार्य आप करते हो। मन सरल रहेगा, शुद्ध रहेगा, शुद्ध कार्य करते रहेंगे, मन कपटी होगा तो कपटी कार्य करते रहेंगे, और मन कपटी बनेगा तब जब आप ऐसे ही दूषित खाना खाएंगे, किसी गलत आदमी के खाद का, पापी आदमी के खाद का, पाप का खाना खाएंगे तो मति भ्रष्ट हो जाएगी। एक बार भक्त बनेंगे तो बड़ा सावधान रहना चाहिए कि इस मुंह में क्या डालना है हमको। एक समय पर भूखा रहना अच्छा है, लेकिन पंच पकवान भी गलत आदमी के हाथ का नहीं खाना चाहिए, बहुत मायने रखता है भक्ति जीवन में। केवल प्रसाद भोजन करना चाहिए जो भक्तों ने बनाया है, भगवान को जिसको प्रेम से भोग लगाया गया है, तो ये ध्यान रखना आप। हाँ, अगर आपको लगती है भूख, समझो लेट हो जाता है वगैरह, साथ में कुछ लेके जाना, अपने साथ में लाया हुआ कुछ फल लेके जाना, फल बहुत शुद्ध होते हैं, फल खा सकते हैं आप, खाने के पहले भगवान को अर्पण कीजिए और खाइए। जो दिखता है वो खाने की इच्छा किसको होती है पता है आपको, बताइए, जो भी दिखता है एनीथिंग इन द वर्ल्ड वो खाने की दिल करता है, वो कौन होता है, जानवर। देखा ना आपने जानवर, वो कहीं भी किसी का भी हो खाने की चीज तुरंत मुंह डालेगा, गाय हो या बकरी हो किधर भी हो, एनीथिंग एंड एवरीवेयर एनी टाइम ऑल्सो 24 आवर्स। बंदर को देखो, घोड़े को देखो, हाथी को देखो, हमेशा चरते रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। लेकिन इंसान का समय होता है ना, नाश्ते का समय होता है, राजभोग का समय होता है, संध्या भोग का समय होता है, शयन भोग का समय होता है, तो इसलिए इस मुंह में कुछ डालना है इसके बाद में तो सोचना कि भगवान को अर्पण किया हुआ है कि नहीं, अच्छे आदमी ने बनाया है कि नहीं बनाया है, किसने बनाया है। इसलिए हम लोग होटल में नहीं खाते हैं, क्यों, क्योंकि होटल में खाली खाना सामने आता है, बनाया किसने वो सामने नहीं आता है, जो बनाया हुआ है वो शायद व्यभिचारी हो, रात को वेश्या के पास जाके आया होगा, सुबह मांस खाया होगा, शराब पी के बीड़ी हाथ में लेते बनाया होगा, एक हाथ में बीड़ी अपने डोसा घुमा रहे हैं, नशे में चू रहे हैं, बोले डोसा बना दे ऑर्डर है तो वो बना रहा है, उसमें फिर बीच में उसका पसीना गिरता है उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या होता है, क्या वर्णन करूँ आपको, ये सब देखा है हमने आंखों से अपने, और सामने अच्छी प्लेट में मसाला डोसा गोल घूम के इतना क्रिस्पी, वाह क्या बात है, लेकिन आप उसके साथ में क्या क्या खा रहे हो और क्या क्या ग्रहण कर रहे हो ये आपको पता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हरे कृष्णा के भक्त जो है वो रेस्टोरेंट में नहीं खाते कभी, खाते ही रेस्टोरेंट में तो गोविंदा में खाते हैं जो भक्तों ने बनाया हुआ है, तो भगवान का महाप्रसाद उधर मिलता है, चाहे डोसा हो या पराठा हो कुछ भी हो।
तो ये जो आदत है ना सब जगह जाके भोग करने की, वो तो भक्तों को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो क्या है, एक जगह पर चूल्हा जला रहे हैं, एक जगह पानी डाल रहे हैं ऊपर से उसमें, एक जगह साफ सफाई कर रहे हैं जो कचरा निर्माण कर रहे हैं, एक जगह कुछ इलाज कर रहे हैं और जैसे कुछ गंदगी खा रहे हैं, है ना। तो क्या मतलब है उसका, एक जगह शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, एक जगह गंदगी भी डाल रहे हैं ऊपर। हाथी कैसा होता है, वो नदी में स्नान करता है, पूरा सुंड से पानी डाल डाल कर सब साफ करता है, बाहर आता है फिर मट्टी में लोटपोट करता है और चला जाता है। उसको कहते हैं कुंजर स्नान, हाथी का स्नान बोलते हैं उसको। उसको कोई मतलब नहीं है स्नान करने में। हम लोगों को एक बार जीवन में शुद्धिकरण का मार्ग शुरू करना है, शुद्ध होना है और शुद्ध होकर शुद्ध अवस्था में भगवान की प्राप्ति करनी है, बस वापस लौट के नहीं आना इधर। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। मैं थोड़ा आज नाराज था सब लोगों को देखकर, मैं भी भूखा था, लेकिन मैंने कुछ लाया था मेरे साथ में, फल वल लेके मैंने थोड़ा खाया उसको बीच में, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपने मुंह में क्या डालना है इसको आपको सोचना है। तो भगवान ने उसका पोहा खाया, लेकिन भगवान ने उसका प्रेम ग्रहण किया उसके। पता था कि ये सुशीला के घर से, सुदामा के घर से आया हुआ है, ये प्रेम की भेंट है, इसमें कोई घी नहीं गिराया हुआ है, इसमें कोई मेवा नहीं गिरा है, लेकिन ये प्रेम का भेंट है। और फिर भगवान के साथ रात को विश्राम किया, फिर दूसरे दिन उनको विदा किया उन्होंने बड़े साश्रु नयनों से, हाँ एक दूसरे को प्रेम के नेत्रों से निकलते हुए आंसुओं से भिगेते हुए लोगों ने विदा किया उनको। सब दरबार के द्वारका के वासी सब लोग एकदम दंग हो गए थे कि कौन है ये आदमी, वे दर्शन ने किया उसको द्वारका में, इतना प्रेम करते भगवान उससे, हाँ रानी से पंखा किया उसको, अपने हाथ से पैर धोए उसके, सब दंग रह गए उसकी भक्ति देखकर। तो भगवान जो है ना वो कभी भी ये देखते नहीं कि मेरे बराबरी का है क्या, इतना फटीचर है क्या कहेंगे मेरे लोग, कोई परवाह नहीं उनको, हिरदन कैर। प्रेम के सामने खुद की इज्जत की परवाह भी नहीं करते हो। भाग गए ना यहाँ से रुक्मिणी को बचाने के लिए, रणछोड़ नाम पड़ा उनका, रण से भागने वाला डरपोक आदमी, मंजूर है उनको भक्त के लिए। तो फिर ये लौट के गए और इतना खुश हुए थे, इतना खुश हुए कि अरे इतने दिन के बाद कितना मेरा दोस्त, कितना प्रेमी दोस्त है, इतना बड़ा राजा बन गया हो, लेकिन फिर भी बचपन की दोस्ती को नहीं भूला। और ये थे द्रुपद और द्रोणाचार्य, वो भी बचपन के दोस्त थे, और द्रुपद राजा का बेटा था राजपुत्र, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण का पुत्र था। तो बचपन में फ्रेंडशिप में वादा किया था कि नहीं तुम जब बड़े हो जाओगे ना, हम मैं राजा बनूंगा ना, तुम्हें मैं बहुत सारी गाय दान दूंगा। तो समय आया एक दिन, इतने गरीब हो गए, बोले दोस्त ने वादा किया था, द्रुपद के पास गए, बोले बच्चा भूखा है, नया नया बच्चा है, दूध नहीं है उसके लिए, दे दो हमें दूध, गाय दे दो। बोले कौन सी गाय, क्या कौन सी गाय, कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से, अपमान कर दिया। पूरे महाभारत की जड़ वहीं पर गिरी, महाभारत का युद्ध जो हुआ ना उसकी जड़ जो है ना, उसकी जो सीड है ना, वो वहाँ बोया गया उसको। वो बड़े इंतकाम की भावना से वापस गए और सोच समझ कर वो कौरव पांडवों के गुरु बने। बोले इनको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा शस्त्र विद्या, और गुरु दक्षिणा में इस पर हमला करने को कहूँगा, और बताया उन्होंने उनको। तो एक दोस्त है द्रुपद और दुर्योधन, और एक है कृष्ण और सुदामा। देखो कितनी अच्छी बात है भगवान। तो ये सोचते हुए जा रहे हो कि मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, कितने महान दोस्त हैं मेरे। आए अपने घर पे, तीन दिन के बाद चलते चलते पता ही नहीं चला कहाँ से आए, हवा से उड़ते आए कि जमीन पे चलते आए, इतने आनंद में थे। और देखा तो क्या है, उनके गांव में सब जगह महल ही महल है, सब हाईवेज बने हुए हैं, हाँ हम रास्ता मतलब क्या महामार्ग बने हुए हैं, दो तरफा झाड़ी लगी हुई है, सबको फल फूल लदे हुए हैं। वो जब घर के अपने पास में आए तो लगा कि इतना बड़ा महल कहाँ से पैदा हो गया, शायद मैं गलती में सोचते सोचते गलत रास्ते पे आ गया। उतने में बहुत सारी सुंदर सुंदर युवतियाँ गहनों में लदी हुई ऐसी औरतें वहाँ पर आई, उसके बीच में एक औरत थी जो बहुत सुंदर और बहुत ऐसे तेजस्वी थी, उसके ऊपर बहुत सारे गहने थे, हाथ में आरती का सामान था, और वो ऐसे आ रही जब मानो कि उसकी तरफ ही आ रही है। बोले ये अनजान औरत मेरे पास क्यों आ रही है, तो कहे स्वामी आपका स्वागत हो। क्या स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। अच्छा, क्योंकि भगवान ने जब सुदामा के दो पुआ खाए ना, दो मुट्ठी, उसी समय उनका घर उधर ट्रांसफॉर्म हो गया, झोपड़ी का महल बन गया। वो अकेली थी बेचारी गरीब औरत, हाँ कहते कि वो गरीबी की वजह से जिसका कुपोषण होता ना, हमें खाना नहीं मिलता है तो कैसे चमड़ी में धर्रे पड़ रहे थे उनके, बहुत दुबली पतली सी, इतनी कांपती हुई, बाल झड़े हुए ऐसे, उनका काया पलट कर दिया पूरा, नौजवान देवी का शरीर दे दिया उनको, गोदाम भर दिए उनके, भंडार भर दिए घर में, हस्तिदंत के फर्नीचर और सोने के नल लगे हुए घर में, ऐसा पूरा महल बना दिया, सैकड़ों दासियां जो अलंकार से सज्जित थी ऐसे आ गई वहां पर, वो चरण दबाने लगी, उनकी सेवा करने लगी। फिर खबर मिली कि सुदामा जी आ रहे हैं, तो सुदामा जी को उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। देख के दंग रह गया, अरे मेरी पत्नी इतनी सुंदर कैसे हो गई। उसी समय जब उनको पता चला कि भगवान की कृपा से ये सब अमूलाग्र बदल हो गया, तो उनका शरीर भी उस समय चेंज हो गया पूरा, एकदम नौजवान और सुंदर राजकुमार जैसे हो गए वो, और सिल्क के वस्त्र आ गए, गहने आ गए उनके ऊपर, एकदम दंग रह गए वो। देखो क्या भगवान की कृपा है, क्या दिया मैंने उनको, कुछ नहीं दिया, देखो बदले में भगवान ने क्या क्या किया। लेकिन विशेष बात यहाँ नहीं है, विशेष बात यह है कि वो उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, अपने घर पे चले गए और पूरा जीवन वहाँ रहे, लेकिन जैसे पहले थे उसी भाव में वहाँ पर रहे। चलो अच्छा मौका आया, अभी पहली बार भोग करने का मिला है मौका, ले लो मजा कर लो, भगवान ने दिया है, उनकी कृपा है, कोई देवी देवताओं के पास तो मैं गया नहीं था, हाँ सब कुछ सही है, अभी एंजॉय करने का पूरा परमिट मिल गया मुझे। नहीं, उन्होंने कहा भगवान का दिया हुआ है, उनकी सेवा में लगना चाहिए। वैसे ही विरक्त भाव में रहे वो। एक जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा है, भागवत में ऐसा लिखा है कि वो अपने घर में महल में रहे और सारी चीजों के बीच में रहे वो अच्छी तरह से, लेकिन भाव उनका वैसे रहा जैसा पहला था। दूसरी जगह मैंने ऐसे पढ़ा है कि वो महल होते हुए भी वो अपने झोपड़ी में ही रहने लगे, एक झोपड़ी बांध के उसमें रहने लगे, और जितना भी धन दौलत था वो गरीबों में बांटना, संतों की सेवा में लगाना, ऐसे ही रहे वो, और जीवन के अंत में भगवत धाम चले गए। तो ये एक दोस्ती का अनोखा नमूना है जो हम देखते हैं सुदामा के जीवन में, और भगवान भी उसी के, वो कैसे है ना, भगवान दीन वत्सल है वो, हृदय से जो दीन है, नम्र है, उसी के नाथ है वो, उसी को अपना लेते हैं। जो अपने आप को वो समझते हैं, वो दिल से भगवान का शरण ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ होने पर भी वो कफल्लक हैं, दरिद्र हैं, और सब कुछ आपके पास है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हृदय से अपने आप को भगवान के सामने आप याचक समझते हैं, तो भगवान उसी के हो जाते हैं। एक बात उनकी आज मुझे अच्छी लगी बहुत, उन्होंने कहा कि सब लोगों को यहां पर सुदामा के भाव में आना चाहिए, सब कुछ भूल कर गरीब बनकर रहना चाहिए। तब भगवान भी द्वारकाधीश ने जैसे सुदामा से व्यवहार किया था, वैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे, कुछ अपने आप को समझ कर जाएंगे उनके पास में, तो फिर वो बोलेंगे ठीक है दूर रहो, लेकिन सुदामा बनकर आएंगे तो गले लगाएंगे, हंसरुओं से भिगाएंगे आपको, प्रेम से आलिंगन देंगे। जैसे वो प्रेम के भूखे, हमको भी प्रेम से भूखा होना चाहिए। हम तो धन के भूखे हैं, काम वासना के भूखे हैं, भोग के भूखे हैं, जैसे भगवान के सामने खड़े होते हैं ऐसे धार 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 मन में से ऐसी लिस्ट निकलती है क्या क्या चाहिए हमको है कि नहीं बताइए, मेरा तो ऐसे होता है, इसलिए मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, आप तो शायद नहीं होंगे ऐसे, लेकिन हमारे मन में ऐसे इतने सारे चीज़ें की चाहत बनी हुई है मन में, क्या क्या चाहिए हमको, कुछ समाप्त नहीं होता है वो, तो वो सब जब मांगे करने वाले आते हैं ना, तो फिर वो उनको साइड में कर देते हैं, बोले क्या मांगने वाला तो बहुत है दुनिया में, देने वाला कौन है, प्रेम देने वाला कौन है, चाहने वाला कौन है, कोई नहीं, सबके साथ मांगना ही है, तुम दो ये दो, तुम ये दो, तुम ये दो, तुम ये दो, सबके साथ मांगते हैं। जब प्रेम देने वाला व्यक्ति होता है भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, और प्रेम देने वाला व्यक्ति को अपने आप को अर्पण कर देते हैं, जैसे भिखारी आपको परेशान कर रहे हैं, दे दो दे दो दे दो, आप कह रहे हैं पीछा छूटने के लिए कुछ है क्या, चिल्लर है क्या, है पत्नी को पूछते हैं कुछ चेंज है क्या तेरे पास यार, क्या कटकट कर रही है, ले भाई जा तू यार, कितना चाहिए साहब, 5 रुपए में क्या होगा, 10 तो दीजिए, दो 10 लो भाई, पीछा छोड़, मैं बहुत दिन के बाद मेरी बीवी के साथ घूमने का आया हूँ, टाइम पास मत करना मेरा। लेकिन कोई पुराना दोस्त मिल गया तो चलो आप भी चलो हमारे साथ, अभी भोजन करने जा रहे हैं, लेट्स गो टुगेदर। तो जो मांगते हैं भगवान से ना, जाके मांगते हैं ना, उनको जो मांगते हैं भगवान दे देते, ले ओ भाई जाओ तुम संतुष्ट रहो। लेकिन जो कुछ नहीं मांगते हैं, खाली प्रेम देने को आते हैं, प्रेम का दान, उसको भगवान खुद को अर्पण कर देते हैं, खुद उसके बन जाते हैं, हाँ, तो ये अर्जुन की बुद्धिमत्ता थी। दुर्योधन ने क्या बोला, अरे ये नियत्ते आदमी को कौन की देखे, क्या करूंगा मैं, सेना सेना इंपॉर्टेंट है, सेना ले लो। अर्जुन ने क्या कहा, नहीं चाहिए मुझे सेना, नहीं चाहिए आपका चक्र मुझे, नहीं चाहिए कमुदे की गदा, नहीं चाहिए सारंग धनुष, कुछ नहीं चाहिए आपका मुझे, आप चाहिए बस मुझे भगवान, आप चाहिए बस मुझे, भटका हुआ आदमी हूँ मैं, मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए, तो बेस्ट ये है कि आप मेरे सारथी बन जाओ। और बाय द वे भगवान अर्जुन के पहले भी सारथी बने हुए हैं, ऐसा नहीं कहा युद्ध में बने, जब खांडव वन जलाने गए तभी भी सारथी बने हुए थे, और भी जगह सारथी बने हुए हैं। और वो निहत्ता आदमी, निशस्त्र, बिना सेना का अकेला आदमी, शूद्र बनकर उनकी सेवा कर रहा है, युद्ध जिता के दिया उसको पूरा कंप्लीटली पूरा महाभारत का युद्ध में विजय कर दिया उसको। कई बार मरने वाला था अर्जुन, कई बार, अनेक बार, लेकिन हर बार ऐसी क्लुप्ति चढ़ाई उन्होंने कि अर्जुन को विजय कर दिया। भले भले योद्धाओं के साथ में, अर्जुन तो इतने बड़े महान योद्धा नहीं थे, भीष्मदेव के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कर्ण भी उनसे महान योद्धा था, लेकिन जिसने भगवान का सहारा लिया है वो सबसे बड़ा भारी पलड़े में होता है जीवन में, सबके सामने वो भारी पलड़े में होता है, क्योंकि वो भगवान का सहारा लेता है। जो बलवान का सहारा लेता है वो खुद अगर दुर्बल भी होगा तो वे बलवान हो जाता है, इसलिए बलवान का सहारा लो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो अभी हम हमारे कल के स्थान की कथा आरंभ करेंगे, आप मूड में हो ना सुनने के। जय हो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्य हम। तो भगवान धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं और दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं, हर युग में आते रहते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, धर्म को स्थापन करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं और दुर्जनों को नाश करते हैं। तो पृथ्वी का भार जो कंस जैसे भयंकर राक्षसों से भरा हुआ था वो नष्ट करने के लिए वो देवकी के गर्भ में आए थे, मथुरा में जन्म लिया, फिर गोकुल में आए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा गए, वहाँ से द्वारका गए, वहाँ से हस्तिनापुर गए, बड़ा संचालन किया उन्होंने बहुत ढंग से एकदम पृथ्वी को राक्षस विरहित करने के लिए। महाभारत का युद्ध उनका आखिरी होल स्केल प्लान था पूरा, वो महाभारत का युद्ध उन्होंने बहुत चालाकी से पांडवों के पक्ष में जाकर राक्षसों का संहार कर दिया, पूरा पृथ्वी को पूरा राक्षस भारहीन कर दिया। फिर वो द्वारका आए, उसके बाद में दंतवक्र का वध किया उन्होंने, सब कार्य उनका समाप्त हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो आप सब जानते हो कि पृथ्वी गाय बनकर ब्रह्मा जी के साथ, देवताओं के साथ भगवान को मिलने गई थी, है ना, जब भगवान ने वादा किया था कि मैं आऊँगा, अवतार लेकर आऊँगा, आप सब लोग भी आना। तो फिर ये कार्य समाप्त हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने आके, ब्रह्मा जी भगवान से मिले द्वारका में आके और कहा, भगवान जिस काम से आपने हमको, हमने आपको विनती किया था वो तो पूरा हो गया, अभी आप अपने धाम में जा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने धाम में पधार सकते हो। तो भगवान ने कहा कि मैं जरूर, मेरा अभी कार्य समाप्त हो गया है, मैं जरूर अपने धाम में जाऊंगा, लेकिन ये मेरी जो यादवी सेना जो है, यादव वंश जो है, इनको भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा वंश है, अभेद्य है, अवध्य है, कोई इनको मार नहीं सकता है, इसलिए इनमें भी थोड़ा गर्व हो गया है, और मैं चला जाऊँगा ना तो ये बड़े आतंकवादी हो जाएंगे, बड़े गर्व से उद्दंड हो जाएंगे और खुद का विनाश करेंगे और पृथ्वी का विनाश करेंगे, तो मुझे मेरे साथ इनको भी लेके जाना है। तो फिर और एक कारण था उनका कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे विरह में भी ये पागल हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा उनका, फिर पता नहीं क्या करेंगे वो, तो बेहतर यह है कि मेरे जाने के पहले मैं उनको भी ले जाऊं। तो देखो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, ये तो कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था उन्होंने, आप जानते हैं ना, नारायणी सेना तो दुर्योधन ने ले ली,
तो वो उस पक्ष में गए और इस पक्ष के खिलाफ युद्ध किया उन्होंने, लेकिन उनको वरदान था, इनको कोई मार नहीं सकता है, एक भी आदमी मरा नहीं उसमें से, सब जीवित रह गए। लौट के द्वारका में आए, फिर उसके बाद की बात है ये, देखो कैसे होता है ना, बड़े बाप के बड़े बेटे होने पर भी थोड़ा गड़बड़ होता है एक्चुअली, ऐसा अनायास से गर्व आ जाता है, ये मैं तो चीफ मिनिस्टर का बेटा हूँ, तो गाड़ी चलाएंगे रोड पे ऐसे गली में कि 100 किलोमीटर पर स्पीड, फिर कुत्ते मरेंगे आदमी मरेंगे कोई परवाह नहीं, हरी बोल हू केयर्स, अपने आप उदंडता आ जाती है बड़े आदमी का बेटा होने से। इन्होंने क्या किया, अभी अभी की उद्दंडता जो है वो दारू पी के गाड़ी चलाना रात को किसी के ऊपर से, वो आज की उद्दंडता है, अभी उस समय की उद्दंडता देखिए कैसी है। इन्होंने क्या किया, सांबदा जाम्बुवती का बेटा है, कृष्ण और जाम्बुवती का जो बेटा है सांब, उसका मतलब है स अम्ब, जो माँ को बहुत ही प्यारा था और माँ से बहुत चिपका रहता था बचपन में, इसलिए उसका नाम पड़ा सांब। तो सांब को बड़ा वीर था, वो बड़ा पराक्रमी था, और बाकी भी कृष्ण के पुत्र थे, प्रद्युम्न था और बहुत सारे पुत्र थे, सात्यकी बहुत सारे यादव योद्धा थे। तो उन्होंने क्या किया, सांब को ना लड़की का ड्रेस पहनाया, औरत बना दिया उसको, साड़ी वाड़ी पहना दिया, घूंघट ओढ़ दिया लंबा इतना चौड़ा सा, और पेट में सारी तकिया डालकर उसको ना गर्भवती बना दिया, और वो गर्भवती औरत को लेकर ये सारे जो पुरुष थे वो ले गए उसको, कहते हैं दुर्वासा के मुनि मिले गए, एनीवेज कोई मुनि के रूम में, मोस्टली दुर्वासा के रूम में लेके आश्रम में ले गए। और उस समय कहते थे कि चाहे साधु भी हो फिर भी औरत घूंघट उठा लेनी थी पुरुष के सामने, केवल पति के सामने, तो घूंघट ओढ़कर उसको ले गए और केवल उसके कपड़े से उसका हाथ बाहर निकाला, तो वैद्य को ऐसे दिखाते हैं, वैद्य को खाली हाथ दिखाते हैं लेफ्ट हैंड औरत का, तो लेफ्ट पंजा निकाला, बोले महाराज जी ये गर्भवती है, आप जरा नाड़ी देखे बता देना क्या होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी। मतलब क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, है ना, साधु का मजाक कर रहे हैं, और साधु भी त्रिकालदर्शी हैं, वो आजकल के MBBS और MD डॉक्टर नहीं है, वो उनको नाड़ी पकड़ के पता चलता था कि लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही है, जिंदा है कि मरने वाला है, गर्भ में मरेगा कि बाद में मरेगा, या जिंदा रहेगा कि अच्छा रहेगा, सब कुछ पता चलता था नाड़ी पकड़ के। ये जो साधु है डॉक्टर भी नहीं है वैद्य भी नहीं है, उसके ऊपर है वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है, उनको तो दिखाई पड़ा कि ये तो भगवान के वंश के पुत्र और प्रपोत्र हैं, सब लोग भगवान की फैमिली के लोग हैं, और इतने बड़े वंश के लड़के होने पर भी साधु का आदर करने के बदले उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका तो दंड होना ही चाहिए। तो कहते हैं कि इसके गर्भ से एक बड़ा मुसल जन्म लेगा, और वो मुसल तुम्हारे सारे यादवों की मृत्यु का कारण बनेगा। फिर तुम डर गए बच्चे लोग, बाप रे बाप, तो हंसी मजाक में खेलते खेलते गए थे, पता नहीं क्या शाप, और श्योर इनफ निश्चित रूप से उन्होंने तुरंत खोला उसको, तो उसके जो तकिया बांध के रखा था ना उसमें से एक बड़ा लोहे का गदा निकला बाहर, मुसल, जो गदे जैसा होता है ना लंबा, ऐसा उसका हैंडल होता है और वो लंबा होता है ऐसा मुसल, जिससे हम लोग कूटते ना मसाले, ऐसा लंबा, वो जो पहलवान लोग घुमाते ना वो अखाड़े में, ऐसा लंबा निकला वो, उसको देख कर ही सब डर गए, इतना भयंकर था वो, देख के ही कांपने लगे वो, और वो सांब सब कृष्ण के जितने बालक थे सब लोग गए उग्रसेन के पास, महाराज आज गलती हो गया हमारे हाथ से, देखो ऐसे 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 हुआ, देखो ये मुसल निकला है। तो उग्रसेन भयभीत हो गए, अरे बाप रे यादवों के कुल का नाश करने वाला मुसल पैदा हो गया है तुम्हारी उद्दंडता की वजह से, ठीक है अभी उद्दंडता तो बाद में, दंड बाद में देंगे आपको, लेकिन इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत कलाकारों को बुलाया और उसको कूट कूट कर कूट कूट कर कूट कूट कर उसको पाउडर बना दिया पूरा, लेकिन उसका तो 99% हिस्सा जो पाउडर हो गया, लेकिन उसका मूल था ना, मूल जहाँ पर हैंडल था वो हिस्सा टूट ही नहीं पाया, किसी भी कारण से टूट नहीं पाया वो, तो बहुत प्रयास किया उसको, लेकिन कभी होता ना कभी कभी वो सब कुछ हो जाता लेकिन वो लास्ट का हिस्सा बच जाता है, वो क्या करे, सारा पाउडर इकट्ठा किया, वो टुकड़ा भी लिया, वो जाके समुद्र में द्वारका में फेंक दिया उसको। बोले अभी कैसे क्या होगा, अभी तो समुद्र में जाएगा बिखर के तो कैसे वध होगा उसका। तो वो जाके समुद्र में जो पाउडर गिरी ना वो धीरे धीरे ऐसे लहरों से बहती 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 बहती, यहाँ से आज के तारीख में वो
250 किलोमीटर दूर है यहाँ से, समुद्र किनारा, प्रभास क्षेत्र बोलते हैं उसको। वहाँ पर जाके किनारे पे सेटल हो गई वो धू, सब जो मट्टी थी वो धूल पाउडर, वो जो टुकड़ा था वो एक मछली ने निगल लिया उसको। फिर एक मछली मछुआरे ने वो मछली पकड़ा, बड़ी मछली थी बहुत, वो टुकड़ा भी बहुत बड़ा था वैसे, मुसल भी बहुत बड़ा था। तो मछली को पकड़ा, तो मछली को जब काटा खाने के लिए तो उसमें से कुछ निकला, बोले ये क्या है, बड़ी चीज़ निकली। तो मछुआरा भी था, वो हंटर भी था, बहुत सारा था, वो कभी मच्छी मारता था, कभी जानवरों को मारता था। तो उसने बोला अच्छा है चीज़, उसका वो अच्छी तरह से तास के मैं उसका बाण बना दूंगा। तो उसने उसका बाण बना के रख दिया उसका अपना। यहाँ पर यहाँ की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद में अचानक द्वारका में एकदम अपशकुन दिखने लगे सब जगह पर। तो भगवान ने कहा कि आप सब लोग को द्वारका छोड़ना चाहिए, अभी जो जो दिख रहा है ना मुझे वासवन, वो पवित्र नहीं है, अपशकुन हो रहे हैं, सब लोग चलो आप, केवल अपने नित्य पार्षदों को छोड़कर जो गौलोक धाम से इस लीला में भाग लेने के लिए आए थे उनको केवल द्वारका में रखा। कौन सी द्वारका में रखा? जहाँ पर हम आज सुबह गए थे, बेट द्वारका, बताऊंगा बाद में उसका। तो जो देवताओं को उन्हें आदेश किया था ना, आप अगर गर्ग संहिता पढ़ेंगे ना, तो भगवान ने डिटेल में ऑर्डर दिया था कि तुमको ये यहाँ जन्म लेना है, तुमको यदुवंश में लेना है, तुमको वृष्णि में लेना है, तुमको अंधक वंश में लेना है, तुमको भोज वंश में लेना है, तुमको वृंदावन में जाना है ग्वाल बाल के रूप में, वहाँ पर नंद महाराज यशोदा यहाँ पर जन्म लेना है, ऐसा डिटेल में पूरा बोलते हैं ना कैसे लीला होगी सब जगह पर, सबको सेटिंग किया था। मैं आने के पहले आपको वहाँ पर जन्म लेकर बढ़ना है आगे। तो जो देवता लोगों से बुलाया था उन्होंने अलग अलग लोगों को, वो सब लोग यादव थे, वो यादव जैसे कामदेव प्रद्युम्न बनकर आए थे, ऐसे लंबी लिस्ट है उनकी। भीष्मदेव अष्टवसु में से आठवें वसु थे, और सूर्य भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे उसके अंदर। अभिमन्यु जो था वो चंद्रदेव, चंद्र का बेटा था सोमदेव का। भगवान ने कहा था हर एक का अपना अपना हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करना है मेरे लीला में, यू हैव टू कम। तो सोमदेव जो था अपने पुत्र से इतना आसक्त था, बोले मैं मेरे पुत्र को नहीं दे सकता इतने लंबे समय के लिए, नहीं देना ही पड़ेगा आपको। बोले नहीं, फिर वो ऐसा करो शॉर्टेस्ट टाइम में उसको मैं भेजूंगा, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए अभिमन्यु को वो रोल दिया 16 साल का केवल, और मृत्यु हो गई उसकी, वापस भेजा सूर्य चंद्रदेव के पास। ये सब देवता लोगों को भी अपना इमोशंस होते हैं, ध्यान रखना। वो भी हमारे जैसे ही है, खाली थोड़ा ज़्यादा पावर है उनके अंदर। तो फिर वो लोगों को उन्होंने बोला सब चले जाओ, उसमें नारायणी सेना के लोग भी थे, यादव वंश के लोग थे, सब लोग थे उसके अंदर, वसुदेव देवकी सब लोग, कुंती वो सब तो उधर उधर थे मूल द्वारका में, जहाँ पर भगवान का 16,108 महल थे, खुद का महल था, खुद का पहाड़ था, उस इलाके में उनको रखा उन्होंने। बाकी लोगों को लेकर वो चले, चलो चलो। तो भगवान की बात मानकर तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया, और तुरंत वर्णन किया हुआ है जैसे आज हम बोट से गए थे ना, वैसे वही वो भगवान के सब जो पार्षद थे वो बोट से द्वारका नगरी से निकले और वो भूमि पर आए पार, समुद्र पार करके, और वहाँ से घोड़े वगैरह उनके रेडी थे उधर, घोड़े रथ वगैरह, और सब रथ की यात्रा करते करते वो प्रभास क्षेत्र आए। और भगवान ने बताया कि प्रभास क्यों जाना है आपको, तो भगवान ने कहानी बताई उनको कि इस प्रभास क्षेत्र में एक बार चंद्र देवता ने तपस्या किया था। चंद्र देवता को दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था उनका, बड़ी धूमधाम से किया था, लेकिन 27 में से एक कन्या से उनका सबसे अधिक प्रेम था, और सबसे अधिक समय वो केवल उसी के साथ बिताते थे। तो 26 अदर उनकी बहनों ने बहुत प्रयास किया कि हमको भी टाइम मिले, नहीं मिला उनको टाइम, तो वो सीधे अपने पिताजी के पास गई, कंप्लेंट किया उन्होंने कि हमारे पति केवल हमारी एक ही बहन को टाइम देते हैं। तो पिताजी ने समझाया उनको कैसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वैसे ही करते रहे वो, हाँ हाँ करके वैसे ही करते रहे। तो फिर दक्ष प्रजापति ने उनको शाप दिया कि तुम्हें आज राज यक्ष्मा रोग होगा, यानी कि आज का टीवी ट्यूबरक्लोसिस, आपका जिस शरीर से आप इतना आसक्त हो गए हो वो शरीर ही घट जाएगा आपका। तो चंद्रमा देखते ना आप, वो उत्तर पक्ष में दूसरे पक्ष में क्या होता है, धीरे 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 नष्ट हो जाते हो, वो चालू हो गया उनका। किसी भी देवता का ऐसा नहीं होता है, केवल चंद्र देवता का ऐसा होता है, क्षय, क्षय कहते हैं उसको, लॉस, हाँ राज यक्ष्मा आयुर्वेद में कहते हैं। तो चंद्र देवता बड़े दुखी हो गए,
तो फिर वो बृहस्पति के पास गए, वो क्या किया जाए, अभी गलती हो गई मुझसे। बोलते प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहाँ पर देवी सरस्वती प्रकट है नदी के रूप में, समुद्र में मिल रही है, उस जगह पर जाओ, बहुत पवित्र क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर शिव जी की पूजा करो। तो उसमें आकर उन्होंने कड़ी तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। फिर शिव जी महाराज ने दर्शन दिया उनको और आशीर्वाद दिया कि ये देखो ऐसा है कि मैं ज़रूर तुमको इस बीमारी से दूर करूँगा, लेकिन दक्ष प्रजापति भी एक पावरफुल व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, उन्होंने जो शाप दिया है उसको मैं काट नहीं सकता। तो महीने के 15 दिन तुम्हारा वो शाप चलता रहेगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन बाकी के 15 दिन जो है वो तुम बढ़ते जाओगे मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से। तो फिर वो अमावस्या के बाद में फिर प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर वैसे अष्टमी, फिर पूर्णिमा, फुल चांद, पूरे अपने पुराने गौरव को प्राप्त किया उन्होंने। फिर 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो ये भगवान ने बताया कहानी, इसलिए आप वहाँ जाओ, बड़ा पवित्र क्षेत्र है वो, जहाँ जाते हैं वहाँ पर सारी अपवित्रता, दुर्गति, रोग राई सब खत्म हो जाता है। हमको वहाँ जाकर भगवान को पूजना है, विष्णु को पूजना है, देवताओं को पूजना है, ब्राह्मणों को पूजना है, संतों को पूजना है, गरीबों को भोजन खिलाना है, यज्ञ करना है, दान धर्म करना है, अच्छे कार्य करने हैं, ऐसा पूरा डिक्टेशन दिया उनको। तो एकदम आज्ञाभावी भाव से चले गए सब लोग और वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने सभी देवताओं को स्थापन किया, गणेश जी को, सरस्वती को, शिव जी को, सबको स्थापन किया, सबकी पूजा किया, यज्ञ याग किए, ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया, यज्ञ पूर्ण किया, सबको दान धर्म किया, गाय दान दी, धन दान दिया, कपड़े दान दिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया उन्होंने। फिर सबको भोजन खिलाया उन्होंने, भगवान को अर्पण करके प्रसाद खिलाया, पेट भर के सबको अपने हाथ से परोसा, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर उनकी आज्ञा लिया और खुद भोजन किया उसके बाद में, मतलब परिपूर्ण कार्य किया, सबके आशीर्वाद प्राप्त किए। और जब संध्या का समय हुआ तो उन्होंने चावल को सड़ाकर बनी हुई जो दारू है मध्य, उसको पीना शुरू किया। संध्या का समय होता है ना, उसमें भगवान का नाम लेना चाहिए। का कारण जानते हो आप? हमारे संस्कृति में संध्या के समय पे घंटी बजती है, शंख बजता है, घी का दीपक हम चलाते हैं, गाय का गोबर का धूप हम चलाते हैं, हाँ, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप, खास करके घी का दीपक, शंख बजाते हैं। क्यों करते सब ये? क्योंकि संध्या के समय पर आकाश में शिव जी अपने 13 प्रकार के जितने भूत के शरीर हैं ऐसे आत्माओं को लेकर घूमते रहते हैं अवकाश में। इसलिए घूमते रहते हैं कि ये सब लोग शिव जी का आश्रय लिए हुए गण हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, डाकिनी, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, वेताल, जितने भी प्रकार के भूत हैं उनको शरीर नहीं होता है, केवल सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि होता है खाली, ऐसा शरीर नहीं होता है हाथ पांव वाला, जानवर का हो, इंसान का, देवता का हो, शरीर नहीं होता है। तो शरीर की खोज में ये लोग शिव जी का आश्रय लेते हैं और शिव जी बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं, सबको आश्रय देते हैं और संध्या के समय सबको लेके घूमते रहते हैं, ताकि कोई भी जीव अगर नर मादि संभोग लेते रहते हैं तो उनके गर्भ में इनको भेज देते तुरंत शरीर प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपके घर में अगर नया नया छोटा बच्चा होगा तो शाम के तरह टाइम पे एकदम रो पड़ता है वो अपने आप, बिना कारण से। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? हमने बहुत अनुभव किया, अचानक शाम के समय पे एकदम बच्चा रोने लगता है, क्योंकि ये जो पिशाच वगैरह योनियां है ना, वो आकाश में घूमकर उनको डिस्टर्ब करती है। और जो कमजोर जीव होते हैं ना, जैसे कि गर्भवती माँ है या नवजात बालक है या बूढ़ा आदमी है या कोई बीमार आदमी है, तो ये कमजोर अवस्थाएं बताई गई हैं, शरीर से कमजोर, आत्मा से भी कमजोर, उस कमजोर अवस्था में अटैक करने का प्रयास करते हो, इसलिए वो बालक तुरंत रोने लगता है। इसीलिए पति पत्नी को कभी भी संध्या के समय संभोग नहीं लेना चाहिए। अगर आप गलती से सूरज के समय, उस अस्त के समय अगर पति पत्नी संबंध करते हैं तो उनके शरीर में पिशाच योनियां प्रवेश करती है, शरीर धारण करती है और वैसा व्यवहार करते जैसा वो पहले करते थे, पापी पापी जीव प्रवेश करते हैं। इसलिए वैष्णव गृहस्थों को ये आदेश है धर्म का कि संध्या के समय कभी भी पति पत्नी का एकांत नहीं होना चाहिए, संभोग नहीं होना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए समय दिया गया है, वो है दूसरा प्रहर रात का, मतलब 6 से 9 पहला प्रहर है जिसमें संध्या होती है, पहले बाद में एक प्रहर होता है 3 घंटे का। 9 से 12 का समय जो है वो गृहस्थों के लिए, वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, मनुष्यों के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए समय दिया गया है।
12 के बाद राक्षस प्रवेश शुरू होता है, वो फिर वो राक्षस योनियां जो है वो संचार करती हैं और फिर वो प्रवेश करते हैं गर्भ में पुत्र के रूप में। ये सब शास्त्र है हमारा। सबसे अधिक गलत काम कब होता है? रात को होता है। ड्रग ट्रैफिकिंग, दारू पीना, व्यभिचार, वेश्या, बस सब कुछ जो होता है ना रात को होता है। वो दिन दहाड़े होता है क्या? दिन दहाड़े कर सकते हैं लेकिन करते नहीं, वो मूड नहीं बनता उनका। रात का समय अनुकूल होता है उनके मूड के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, डकैती डालने के लिए, गलत काम करने के लिए रात का समय होता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे लोगों को देर रात तक जगना नहीं चाहिए, क्योंकि देर रात तक जगेंगे तो ये सारी प्रवृत्तियां असर करेगी आपके ऊपर और अच्छे अच्छे आदमी के मन में भी गलत गलत विचार आने लगेंगे। अभी कुछ करूँ क्या, ऐसे कुछ लगेगा, कुछ करना चाहिए। इसलिए संतों को भक्तों को कहा गया है कि दूसरे प्रहर में निद्रा ग्रहण करो, 9:30, 10 o'clock गो टू बेड। और जब ये सब राक्षस लोग रात की सारी क्रीड़ा करके सुबह सोने को जाते हैं 4 बजे, तो भक्त लोग उठ जाते हैं 4 बजे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब राक्षस लोग जगते हैं तो भक्त लोग सो जाते हैं, जब राक्षस लोग सो जाते हैं तो भक्त लोग जग जाते हैं भगवान का नाम देने के लिए। एनीवे थोड़ा डिटूर हो गया अपना कथा का। ये कहाँ से कथा शुरू हो गई थी बताइए? संजा के समय उन्होंने मैरेय नाम का मद्य पीना शुरू कर दिया और जैसे ही ये मद्य चढ़ा उनको नशा आ गई तो फिर उन्हें चर्चा शुरू किया कि महाभारत के युद्ध में सबसे अपना पराक्रम किसने किया। तो सबको लगता था कि मैंने ही किया, तो वो चर्चा करने लगे, मैंने ऐसे युद्ध किया, उसको मारा, इसको मारा, ऐसा किया वैसा किया। अरे तूने क्या किया? मैंने देखो ऐसा किया वैसा किया, तो वो उस कोने में था महा कुरुक्षेत्र के, मैं तो उस कोने में था, तूने क्या देखा है, तूने क्या किया, ऐसे करके करके पहले मजाक मजाक में डिस्कशन चालू हो गया, फिर वो तू तू मैं हो गया, फिर क्रोध हो गया, फिर इतना क्रोध हो गया, इतना क्रोध हो गया कि उन्होंने शस्त्र उठाए और युद्ध शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। ऐसा लिखा है कि खच्चर, गधा, घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता, सुअर और मनुष्य, इस पर चढ़कर उन्होंने युद्ध किया, जो मिला उस पर चढ़ पे युद्ध करना शुरू कर दिया और जितने शस्त्र थे सब निकाले, सब शस्त्र टूट गए। फिर हाथ से मौका मारी करने लगे, फिर देखने लगी इधर उधर क्या हो गया है। तो उस जगह पर जहां पर वो पाउडर सेटल हो गई थी ना, उससे एक प्रकार का बाम्बू जैसा घास जो कड़क होता है ना, बाम्बू कैसा होता है, पहले नरम नरम होता है बाद में फिर कड़क हो जाता है, ऐसा कुछ अजीब प्रकार का घास वहां पर उगा हुआ था, गवत, वो उसने उखाड़ा ऐसे, तो लगा अच्छा कुछ लंबा सा उखाड़ा, तो अचानक उखाड़ते ही सबके हाथ में वो गवत जो था घास थी वो लोहे का धार धार शस्त्र बन गया, एकदम धार धार, क्या कहते, नोकदार, नुकीला और शार्प ऐसे अस्त्र बन गया वो। और वो जैसे इतना शस्त्र लेके उन्होंने पहले युद्ध किया था एक दूसरे के साथ में, लेकिन वो एक्चुअली सब मरे नहीं, घायल हो गए इधर उधर लेकिन मरे नहीं, लेकिन जैसे ही इसको उठाया और उसको हाथ लगाया, किसी को लगाया, वहीं पर मुर्दा हो गया वो खाट करके, किसका सर कट गया, किसके हाथ कट गए, किसके पैर कट गए, और वो घास से बने हुए लोहे के शस्त्र से सब लोग मर गए। इतना कि जब मार रहे थे तो उन्होंने भगवान पर भी आक्रमण किया, भगवान ने उनको रोकने का प्रयास किया। जब पहले युद्ध चल रहा था तो कृष्ण बीच में आए, बलराम जी बीच में, अरे रोको रोको सब लोग ऐसे, लेकिन उन्होंने भगवान को भी शत्रु मानकर भगवान पर भी हमला किया। देखा नशे का परिणाम कैसा होता है, नशा करते ना हम लोग, तुम्हारी सद असद विवेक अच्छी बुद्धि जो ना वो भ्रष्ट हो जाती है, पहचान भी भूल जाती है, जैसे जाम्बुवंत भी भूल गए क्रोध में कि हमारे सामने भगवान खड़े हैं, भूल गए, ये तो क्रोध के साथ में इतने पागल हो गए थे कि जो अपने भगवान है स्वयं द्वारकाधीश उस पर भी आक्रमण किया उन्होंने, तो भगवान ने भी उनसे युद्ध किया। लेकिन जैसे ही ये गवत को उठाया उन्होंने तो सब लोग मर गए। भगवान को बड़ा दुख हुआ, कैसे मेरे वंश के लोग मर गए। इसमें हमारे लिए एक बड़ा लेसन है, प्रभुपाद जी बताते थे हमेशा, यादव कौन थे, यादव भगवान के परिवार के लोग थे, बाहर से कोई भी व्यक्ति उनको मार नहीं सकता था, चाहे किसी भी युद्ध में जाए, अवध्य थे वो। लेकिन कैसे मरे वो, एक दूसरे के साथ लड़के मरे, आपस में लड़के मरे, उसको मराठी में यादवी युद्ध कहते हैं। अपने आप लड़ेंगे ना तो मर जाएंगे, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हरे कृष्णा आंदोलन जो है ये आदिवी सेना है, ये बाहर का कोई आदमी इसको हाथ नहीं लगा सकता है, माया इसको छू नहीं सकती है, माया में इतना बल नहीं कि ये भक्तों पर हमला करके उनको नष्ट करें। लेकिन जब भक्त लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो दोनों ही खत्म हो जाते हैं, दोनों का लाभ नहीं होता है, कभी भी याद रखना। आप चाहे सच हो, सत्यवाद सत्य पक्ष में हो, दूसरा भक्त गलत पक्ष में हो, आप सही हो, दूसरा आदमी भक्त जो है वो अपराधी हो, लेकिन फिर भी जब ऐसी अवस्था में भी दो भक्त लड़ते हैं तो दोनों का नाश होता है, उसमें नुकसान दोनों का होता है। इसलिए हमारे पास जब भक्त लड़ते आते हैं तो हम एक ही कहते हैं, देखो भाई इसमें सच कौन है गलत कौन है ये भी हम जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जब आप लड़ोगे तो दोनों का नुकसान जरूर करोगे, बोथ पार्टीज विल बी एट लॉस, चाहे सत्य कौन है असत्य कौन है बाजू में रहेगा, न्याय अलग करेंगे, उसका न्याय अलग से होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब भक्त एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो उनका सर्वनाश ही होता है, उसके अंदर किसी का भला नहीं होता है। तो भी करना क्या चाहिए, यही सोचना चाहिए कि अगर मैं मर रहा होगा और मेरे पास में मेरा एक रिश्तेदार खड़ा है और एक गुरु भाई खड़ा है तो कौन क्या करेगा, रिश्तेदार रोएगा, अरे मेरा मामा, अरे मेरा चाचा, अरे तुम जा रहे हो, मुझे दुख हो रहा है बड़ा। और भक्त क्या करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले प्रभु जी बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे उनको रोएगा नहीं और बाद में रोएगा, पहले उसको याद दिलाएगा भगवान के नाम की, चाहे पहली बार झगड़ा किया होगा, नुकसान किया होगा, क्या क्या लड़े होंगे, मत्था टेका होगा या मत्था फोड़ा होगा, क्या पता नहीं क्या किया होगा, लेकिन जब मरने का समय आएगा ना तो वो भक्त कितना भी बुरा रहेगा, आपका पास झगड़ा रहेगा, लेकिन आप मरते समय वो आपके कान में आके भगवान का नाम पुकारेगा। मैं हमेशा ये पूछता हूँ झगड़ने वाले भक्तों को, क्या लगता है आपको, अगर आप मरते होंगे या आदमी सामने खड़ा होगा आपके कान में भगवान का नाम का जप करेगा ये? हाँ प्रभु जी ये तो करेगा निश्चित, मेरी बनती नहीं उसके साथ, लेकिन मेरे को इतना श्रद्धा है कि अगर मैं मरता रहूंगा तो ऐसा नहीं बोलेगा मरने वाले को क्या करना है, इतना कष्ट दिया मुझे, इतना मेरा अपराध किया, मेरा मैं वैष्णव, मेरा वैष्णव अपराध किया उसने अच्छा हो गया जा रहे नरक में जाने दो, अच्छा हो गया उसका, ऐसा नहीं बोलेगा वो। कितना भी दुश्मनी होगा तो भक्त जो होगा वो आखिर में कान में आके भगवान का नाम गूंजेगा। ये बात को समझकर सारे झगड़े हम मिटा सकते हैं, सारी दुश्मनियां मिटा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में शायद दुनिया के 0.001% पॉपुलेशन हमारे हरे कृष्ण में होगा, बहुत दुर्लभ है भक्त लोग ना इसलिए, लेकिन उसमें से भी अगर आप झगड़ते रहोगे एक दूसरे के साथ में, वाद विवाद करते रहेंगे, द्वेष करेंगे, कंपटीशन करेंगे, हाँ, और दूसरे का बुरा सोचेंगे, तो अपना ही आंदोलन जो है यादव वंश का वो आप खुद ही समाप्त कर देंगे। जो हमको यश मिलना चाहिए भगवान की भक्ति में वो हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए भक्तों को, जो भक्त लोग हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं, भगवान पर प्रेम करते हैं, भगवान को चाहते हैं, उनको जितना हो सके एक दूसरों को सहन करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। कहना यहाँ बैठकर आसान है लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि भक्त बहुत कीमती वस्तु है, भक्त बहुत अमूल्य व्यक्ति है, इस बात पर हमको हृदय से श्रद्धा होनी चाहिए। One who believes in devotees as most important people is a successful person in life. वो श्रद्धा आपको अपने मन में पैदा करनी होगी कि हाँ जो भी कुछ है, जितने भी दोष है, दोष किसमें नहीं है, इस दुनिया में जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको शरीरधारी, उनमें दोष है, इसलिए यहां बैठे हुए हम लोग, नहीं तो हम लोग यहां क्यों बैठते हैं, अगर दोष रहित होते तो भगवान के पास नहीं होते, दोष है छोटे मोटे बड़े छोटे, इसलिए शरीर धारण करके यहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भोग भोग रहे हैं। लेकिन जो इनमें से जग रहे हैं कि भैया गलती होगी हमसे, अभी भगवान का भजन करके जाना चाहिए वापस, वो बड़ा मूल्यवान व्यक्ति होता है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, ऐसे हजारों 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 में से एक व्यक्ति मेरी ओर मुड़ता है, भगवान कहते हैं, ऐसे मुड़े हुए हजारों में से एक मेरा भक्त बनता है, ऐसे भक्तों में से एक मुझ पर प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, और ऐसे हजारों प्रेम करने वाले से एक मुझ तक पहुंच पाता है, इतने दुर्लभ है ये भक्ति का मार्ग। तो आपको क्या लगता है 300 लोगों का इतना बड़ा समुदाय यहाँ बैठा है, बैठने को जगह नहीं, चलने को जाने को भी जगह नहीं है, इतने लोग बैठे हैं, लेकिन ये दुर्लभ लोग हैं, सब लोग बड़े विरला लोग हैं। हाँ, दुनिया का पॉपुलेशन कितना है और कितने लोग भक्त हैं चार संप्रदाय मिलके? हार्डली एनी बड़ी, कितना परसेंटेज है उसके अंदर। लेकिन जब तक हम लोग ऐसी चीज़ को सिद्धांत के रूप में नहीं समझते हैं तब तक यही चलता रहेगा, झगड़ते रहेंगे। और आप चाहे जितना पाप कर लो भगवान आपको माफ़ करेंगे, क्योंकि बताया ना जितने पाप हम नहीं कर सकते उतना भगवान का नाम लेकर हम धो सकते हैं। एक भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप उतना पाप कर नहीं सकते, उतना पाप एक नाम भगवान का धो सकता है। लेकिन जो वैष्णव अपराध करता है, तोमस ताने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हारा भी अपराध अगर कर दिया भगवान हमने तो भी तुम्हारा नाम हमको तार देगा उससे, लेकिन भक्तों के चरणों में अपराध कर दिया ना ही परित्राण, उसका परित्राण करना आपके हाथ में भी नहीं है, है ना। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया, वो इतने बड़े तपस्वी थे, दुनिया डरती उनसे, लेकिन चक्र लग गया उनके पीछे, भागे, ब्रह्मा लोग गए, शिव लोग गए, कैलाश गए और विष्णु लोग भी गए, विष्णु के पास गए, भगवान ये आपका शस्त्र है, बचाओ इससे। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा शस्त्र जब कोई मेरे भक्त का अपराध करता है मेरे नियंत्रण के बाहर हो जाता है वो, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो अभी करे क्या, उपाय तो बताओ। बोले जाओ जिसका अपराध किया उसकी माफी मांगो। तो दोबारा ब्रह्मा कैलाश विष्णु वैकुंठ करके वापस लौट के पृथ्वी पर आए, जहां पर अम्बरीश जी खड़े हैं उनके चरणों में गिरे, तब जाके चक्र जो है बैक टू पेविलियन वापस चला गया, तब तक चक्र पीछे लग गया उनके। तो वैष्णव अपराध करने से भगवान का शस्त्र आपके पीछे लग जाएगा, जो राक्षसों के पीछे लगता है ना वो हमारे पीछे लग जाएगा, चाहे हम बाहरी दृष्टि से भक्त होंगे लेकिन भक्त का अपराध करेंगे तो नहीं बचेंगे। तो एनीवेज बड़ी लंबी कहानी है, तो इस तरह सभी यादव लोग मर गए। उसके बाद जब ये सब लोग मर गए, उसी जगह पर बलराम जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने ऊपर ही ध्यान करके वो भी अंतर्धान हुए, वहीं के वहीं बलराम जी धाम चले गए। उसके बाद भगवान, ये तो बरगद का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए ध्यान लगाकर। जहां पर सरस्वती और उसकी एक ब्रांच है हिरण्य नदी, हाँ, वो एकत्र मिलती है और दोनों मिलकर समुद्र को मिलते हैं, बड़ा पवित्र स्थान है वो, वहां पर समुद्र किनारे जहां पर नदी सरस्वती और हिरण्य नदी का मिलन हो रहा है, उस जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भगवान। कैसे बैठे? एक पैर दाहिना सीधे और बायां पैर का पैर ऐसे, दूसरे जंघा पर उन्होंने अपना बायां पैर रखा, उनके तलवे जो बायां पैर का तलवा था वो ऐसे ऊपर की दिशा में, और बैठ के वो उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण कर दिया, उनका सांवला रंग बहुत तेजस्वी बन गया, उस सांवले रंग से गोल्डन रंग, हाँ, स्वर्ण विद्युल्लता, जैसे कि स्वर्ण की आभा जो है ना, द्युति कहते हैं उसको, स्वर्ण द्युति प्रकट हो गई उनसे, चार भुजा प्रकट हो गई और बहुत सुंदर स्मित हास्य प्रकट हो गया उनके चेहरे से, उनके मकर कुंडल कौस्तुभ मणि बहुत ज्यादा तेजस्वी होकर चमकने लगे। तुरंत उनके सामने उनके सारे अस्त्र शस्त्र व्यक्ति रूप में प्रकट हो गए, सुदर्शन चक्र, कमुद की गदा, सारंग धनुष, पद्म, शंख, सब व्यक्ति रूप में प्रकट हो गए, हाथ जोड़कर सब ऐसे अनेक सूर्यों के समान चमकते हुए व्यक्ति वहां प्रकट हो गए। फिर क्या हुआ, वो जो था ना जिसने मछली पकड़ी थी और जिसने उस चीज का बाण बनाया था, वो वहां पर शिकार करते ढूंढते ढूंढते आया, दूर से देखा कोई चीज चमक रही है लाल रंग की, उसको लगा हिरन है, तो उसने बाण मारा, वही चीज लेकर बाण मारा। उस समय ऐसे कहा गया, लिखा है भागवत में, कि भगवान के मूल शरीर से एक दूसरा शरीर पैदा हो गया चतुर्भुज, जिसके पैर को वो बाण लगा उसमें से खून निकला और वो शरीर मर गया एक्चुअली, और उसी समय पर वो जरा जो है वो व्यक्ति जरा नाम है उसका, वो भाग भाग के वहां पर आया। उसको लगा हिरण को पकड़ना है, देखा तो हिरण नहीं है तो पैर है, और पैर नहीं है तो भगवान का पैर है, द्वारकाधीश भगवान का। तो बड़ा दुखी हो गया वो, कह रहे मैंने क्या किया ये, और रो रो कर भगवान के चरणों में गिर गया वो, और माफी मांगने लगा, भगवान मुझे माफ करो, मैंने समझा कि ये हिरण है, मैं भूल गया, ये सब मेरी माया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, लेकिन मैं इतना घोर अपराध किया, मैंने माफ करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई आपका अपराध नहीं है। और उसकी पहचान देते हैं उसको कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ से कैसे हुआ ये, वैसे तुम भृगु मुनि हो, जब तुमने भगवान कौन है ऐसे एक बार सभा में डिस्कशन हुआ, कौन भगवान है, ब्रह्मा भगवान है कि शंकर भगवान है कि विष्णु भगवान है कि गणेश जी भगवान है कि कौन भगवान है, तो संतों ने कहा कि एक काम करें भृगु मुनि आपको चुनते हैं, आप जाइए और आप परीक्षा लेकर आइए। तो भृगु मुनि निकले, भृगु तो सबसे बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो, भार्गव मतलब भृगु वंश के। तो वो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का कुछ अपमान किया, तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोध में आ गए, शिव जी को बोला अरे तुम तो भस्म लगा के तो जंगल में बैठते हो, शमशान में बैठते हो, तुम गंदे आदमी हो बहुत। तो वो त्रिशूल लेके भागे उनके पीछे, तो बोले ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो गए, तो ये भगवान नहीं, शिव जी भागे ये भी भगवान नहीं। और वैकुंठ में गए तो लक्ष्मी देवी भगवान के चरण दबा रही है, भगवान आराम फरमा रहे हैं, शेष नाग पर लेटे हुए, जाके सीधे लात मार दी, छाती पर लात मार दिया उनकी, लत्ता प्रहार कर दिया पूरा। तो लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान बड़े उठे, अरे अरे महाराज जी ब्राह्मण देवता, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरा छाती जो है वज्र का बना हुआ है, मैं जानता हूँ इतना कठिन छाती है ये, आपका पैर तो इतना कोमल है, ब्राह्मण लोग तो वैसे ही कोमल होते हैं, आपके पैर इतने कोमल है, इसी कोमल पैर से आपने मेरे इतने कठिन छाती पर लत्ता प्रहार किया, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं आई। तो बड़े दंग रह गए प्रभु मुनि, अरे लात मारा मैंने तो, इतना लात तो शिव जी को मारा नहीं था, इनको लात मारा फिर भी ये आकर मुझे माफी मांग रहे हैं कि कहीं कष्ट तो नहीं हुआ आपको, और आपका पैर मेरे छाती पर लगना ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ब्राह्मण को मैं खुद पूछता हूँ, मेरे पूजनीय वंदनीय ब्राह्मण है, कितने जीवन भर में उन्होंने भगवान ने सिद्ध किया कि ना, अपने कितने अवतारों में भगवान ने सिद्ध किया है कि ब्राह्मण मेरे लिए वंदनीय है, ब्राह्मण के मुख से भोजन करता हूँ मैं, उनके आशीर्वाद की मैं आशीर्वाद देता हूँ लोगों को उनके हाथ से। तो आपका ये चरण कमल चिन्ह जो छाती पर निकला है ना, वो संभाल के रखूंगा मैं। मैंने आपको बताया द्वारकाधीश के दर्शन का वर्णन किया था ना, तो भृगु चरण चिन्ह का एक अलंकार के रूप में भगवान उसको संभाल के रखते हैं। अरे ये तो बात भगवान तक ठीक रही, भगवान खुद को कुछ भी कर सकते हैं, खुद के लिए कुछ भी सहन कर सकते हैं, लेकिन जो पत्नी है भगवान की वो कैसे सहन करेगी। तुरंत उन्हें शाप दिया ब्राह्मण को कि तुम ब्राह्मण सब लोग गरीब रहोगे हमेशा, मैं तुम्हारे घर में निवास ही नहीं करूंगा कभी, और शाप दिया कि तुम जाके नीच योनि में जन्म लोगे। जाके वो शूद्र जन्म ले लिया उसने, हंटर बना, मतलब वो जानवरों को मार के खाने वाला बना। तो देवताओं की दृष्टि से जो जानवर और मछली वगैरह का मांस खाते हैं वो बहुत नीच जाति के होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम लोग चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया होगा, लेकिन हम मांसाहार करते होंगे, चाहे हम खुद नहीं मारते होंगे, कोई और मारता होगा और हम उसका खाते होंगे, मरा हुआ आदमी का, मरा हुआ जानवर का या प्राणी का, तो हम जन्म से उच्च जाति के होने पर भी नीच योनि के जीव बन जाते हैं। तो ये भृगु मुनि थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवताओं के समान थे वो, सप्तऋषि में उनका नाम आता है, वो भी एकदम शूद्र फांसे पार दी, मतलब क्या क्या भिल्ल बन गए वो, और बहुत पाप किया उन्होंने, और उसी पाप भावना में आकर उन्होंने फिर भगवान का भी बाण मारा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी सब योजना थी और अभी आप को मैं मुक्त कर देता हूँ। तो भगवान ने उसको मुक्त कर दिया, जरा को भृगु मुनि को अपने पुनः स्थान पर स्थापित कर दिया, और सबके मतलब सब देवता लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे, भगवान के शस्त्र से तो थे ही वहाँ खड़े, सब देवता भी वहाँ पर आ गए इस दिव्य दृष्टि को दिव्य घटना को देखने के लिए। तो उस समय किसी को नजर में नहीं आया, केवल ब्रह्मा जी और शिव जी को नजर आया कि भगवान का एक शरीर यहाँ पर मर कर गिर गया, मर कर मतलब कैसा, अवतरण चिन्हों के अंदर इन इन्वर्टेड कॉमास गिर गया वहाँ पर, और जो रियल शरीर था भगवान का वो लेने के लिए गरुड़ ध्वज का एक विमान आया वैकुंठ से, भगवान उसमें विराजमान हो गए और वैकुंठ चले गए, अपने धाम में चले गए, उनके पीछे पीछे उनके शस्त्र जो थे वो भी अपने अपने वाहनों पर बैठकर उनके साथ में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। हरे कृष्णा। भगवान का तिरुभाव का प्रसंग कहते हुए बड़ा दुख होता है, और भगवान जब छोड़ के चले गए ना, तो उस समय दारूक जो है, दारूक भगवान का जो सारथी था ना, भगवान का हमेशा भगवान को रथ चलाता था, वो रोते रोते वहां पर आया, आंसू बहाते, आंसू नदियां बहाते आया, भगवान के चरणों पे गिर गया, भगवान आप मत जाना है, प्लीज डोंट गो। तूने कहा दारूक तुम बड़े बड़े प्रिय भक्त हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही मुझे, और जाऊंगा मैं। तुम जाके सभी जो द्वारका में है ना बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनको जाकर खबर कर देना और सांत्वना कर देना। तो वो लोग भी भाग भाग के आए यहाँ पर, सब लोग दारूक ने जाकर खबर दिया, सब लोग भाग कर आ गए उधर। और ऐसे लिखा है शास्त्र में कि भगवान का विमान जैसे ही उड़ा, उनके साथ में सत्य धर्म श्रद्धा गौरव सौंदर्य और सारे अच्छे अच्छे गुण जो है उनके साथ ही चले गए। लेकिन उस समय आकाश में दुंदुभियां बजी देवताओं की तरफ से, देवताओं ने सब पुष्प बरसाए भगवान के ऊपर। और भागवतकार जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो बताते हैं कि जो श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त होकर इस भगवान की तिरुभाव लीला को सुनता है, वो जहाँ भगवान पहुँचे वहीं पहुँच जाता है। ऐसे भी कहा है कि जो सवेरे और शाम को भागवत जी के इस अध्याय को बड़े ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है या पढ़ता है, वो भी जहाँ भगवान पहुँचे अपने निज धाम में वहीं पहुँच जाता है। उसके बाद में सभी लोगों की जो पत्नियाँ थी, कृष्ण की पत्नियाँ, बलराम की पत्नी, वसुदेव, जितने भी लोग वहाँ पर मरे हुए थे, वसुदेव तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जितने यादव थे, जितनी प्रद्युम्न की पत्नी, अनिरुद्ध की पत्नी, हाँ सात्यकी की पत्नी, जितने भी यादव वीर थे, सबकी पत्नियाँ रोते रोते आई। और अर्जुन आए, युधिष्ठिर महाराज आए, सब लोग आए वहाँ पर, बहुत शोक व्यक्त किया उन्होंने। और अर्जुन ने और युधिष्ठिर महाराज ने अपने जिम्मे सबका क्रियाकर्म करने का निश्चय किया। लेकिन जब उनका अग्नि जलाया गया सबका, हजारों लाखों वीरों का, कितना भयंकर दृश्य होगा वो, इतना सामूहिक किसका नाश कभी हुआ नहीं देगा आज तक, एक साथ में एक परिवार का इतना सामूहिक नाश, कितना बड़े इलाके में ये सब होता होगा, शमशान घाट पता नहीं, इतने क्या कहते हैं उसको, अंत्य संस्कार के अग्नि जलाए गए होंगे एक साथ में। तो हर एक अग्नि में उसके उसके पत्नी ने प्रवेश किया, इच्छा से अपने आप चढ़ गई वो अग्नि में, और सती चली गई सब लोग। और उसके बाद में उनका जो श्राद्ध कर्म था वो अर्जुन ने किया। आप मैंने बताया कहा नहीं आपको, पिंडारक क्षेत्र में सब लोग गए और उन्होंने वो पिंड दाकर पहला टेस्ट किया, तो दुर्वासा की तपस्या से और आशीर्वाद से वो पिंड तैरने लगे, तो उस पिंड तारक क्षेत्र में अर्जुन और पांडवों ने मिलकर सभी यादवों का क्रियाकर्म किया, यहाँ तक कि दुर्योधन का और कौरवों का और वो कुरुवंश में युद्ध किए सब लोगों का भी किया उन्होंने, बड़े भाव से किया। भगवान ने एक बात बताना मैं भूल गया बीच में, उद्धव जी भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे, और उद्धव जी शुद्ध भक्त होने की वजह से ये जानते थे कि अभी कुछ ही दिन में भगवान अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा को आगे बढ़ाए कि विश्राम दे यहाँ पर, ये जगह सुरक्षित है, वैसे चिंता मत करना, कोई शेर वेर नहीं आएगा यहाँ पर। आतंक हुआ तो केवल मेरा होगा कथा के रूप में, और कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, कितना बजा अभी? वाओ हरे कृष्णा। तो सोमनाथ की कथा मैंने किया ही नहीं, तो बाकी है वो। एनीवेज तो उद्धव जी, संक्षेप में बता दो सब कुछ। हाँ तो उद्धव जी आते हैं भगवान के पास, रोते हैं कि आप जाने वाले हो, मुझे सहन नहीं होगा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे उपदेश करो, मेरा दिल को शांत करो। तो 11वें स्कंद में भगवान ने उसको उद्धव गीता बताई है, बहुत सुंदर, जितना अर्जुन को बताया है उससे भी अधिक विस्तार में उन्होंने भगवान ने उद्धव जी को बताया है, पूरा बोध दिया। सारांश उसका यह है कि कि उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि दुनिया जो आप जिसमें रहते हो ना शरीर धारण करके, ये सब माया का खेल है, इसमें दिल मत लगाना, हमेशा मेरे चरणों पर अपना ध्यान और भजन रखना, और वैसे ही विरक्त होकर मेरे भजन में मस्त होकर आप दुनिया में जीना जितना समय आपको रहना होगा, और उसी से आप इस दुनिया के माया जाल से फंसकर हटकर निकलोगे और मेरे धाम में पहुंचोगे। ये उस पूरा उद्धव गीता का सार है। उन्होंने उसमें अवंती ब्राह्मण की कथा बताई, उन्होंने फिर 24 अवधूत के गुरु के वर्णन किया, बहुत सारी कहानियां बताई अर्जुन उद्धव जी को। बहुत सुंदर अध्याय है 11वां स्कंद भागवत जी का, और उसको बताया कि जब मैं जाऊंगा तो सभी दुखी होंगे, उनको आप सांत्वना देना मेरे परिवार के लोगों को, यादव जी जाएंगे सब लोग तब। तो ये भी हुआ है। तो अभी यहाँ पर स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि किस दिन भगवान चले गए, जिस दिन हम गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी कि हिंदू साल का पहला दिन, उस दिन दोपहर को 2:27:30 के समय भगवान इस दुनिया को छोड़कर अपने धाम में चले गए। आज कितना साल है? 2016। ये साल कब शुरू हुआ? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस साल से ये इंग्लिश साल की गिनती करते हैं हम लोग, और हम बोलते हैं ना बिफोर क्राइस्ट बीसी, और एडी यानी कि अभी 2016 एडी, और बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो ऐसा है कि 3102 बीसी 18 फरवरी 3102 ईस्वी सन के पहले इस दिन चैत्र शुद्ध प्रतिपदा थी, शुक्रवार का दिन था। उस दिन दोपहर को 2:27:30 पर भगवान ने अपना शरीर अपने धाम में लेके गए। मतलब आज से 5,118 साल पहले, हाँ 10 महीने, 5,118 साल 10 महीने और कितने दिन बताइए? आज तारीख कितनी है? 28 दिसंबर, 10 दिन। आज से 5,118 साल 10 महीने और 10 दिन के पहले भगवान दोपहर को 2:27 को अपने धाम में चले गए। उनका जन्म जो है वो कभी हुआ था? आज से 5,243 साल के पहले भगवान का जन्म हुआ था, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में 125 साल और कुछ महीने का निवास किया। उस दृष्टि से देखा जाए तो आज के तारीख के 5,243 ईयर्स के पहले भगवान का जन्म हुआ था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपको संक्षेप में मैं सोमनाथ की कथा बताता हूँ फटाफट एकदम, हाँ एक्सप्रेस कथा करता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो आराम से भी कर सकता हूँ, लेकिन रात को सोना भाई आपको, सुबह जल्दी भी उठना है। तो ये जो प्रवास क्षेत्र है इसको कई नाम है, इसको भृगु तीर्थ भी कहा गया है, देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहा गया है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर देह छोड़ दिया। भालका तीर्थ भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया। जिसको नींद आ रही है वो खड़े हो सकते हैं सोमनाथ जी का कथा सुनने के लिए। सोमनाथ जी का जो वर्णन है प्रभास क्षेत्र कहते हैं उसको, प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ जी का है। आज के ज्योग्राफी में वेरावल है ना, वेरावल लास्ट स्टेशन जो हमारी ट्रेन है ना, वो राजकोट से ऐसी आई और ओखा की ओर गई, एक ब्रांच खुल गया और वो वेरावल जाके लास्ट रुकती है। तो वेरावल भी समुद्र किनारे ही है, और वहाँ पर ये भालका तीर्थ है प्रभास क्षेत्र। और इसका वर्णन देखो कहाँ से प्रमाण आता है इसका, विष्णु पुराण, संत पुराण एक मेन है, प्रभास खंड इसमें उसका वर्णन आता है, महाभारत के मुसल पर्व में उसका वर्णन आता है, मत्स्य पुराण में आता है, हरिवंश पुराण में आता है, श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में 15वें अध्याय में 14वें अध्याय में आता है, 10वें स्कंद में और 11वें अध्याय स्कंद में भी उसका वर्णन आता है, प्रत्यक्ष नाम से वर्णन आता है। ये भारत के नैऋत्य दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में है, समुद्र के किनारे हैं, सौराष्ट्र देश में है। 12 योजन की परिक्रमा है इसकी, एक योजन 8 मील का होता है, 12 योजन की परिक्रमा है, 5 योजन का इसका मध्य स्थान है, मध्य पीठिका, तन मध्य मद्ग्रहम लिंग रूपो दधि सन्निधौ। शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं स्कंद पुराण में, वर्णन कर रहे हैं कि इसके बीच में मेरा भी स्थान है,
स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती को आह्वान किया, वो दक्षिणा अभिमुख बनकर यहाँ प्रकट हो गई और उसी समय समुद्र भी यहाँ प्रकट हो गए उसके पास में। चार ऋषि आए, हिरण्य, वज्र, नयक और कपिल। इन चार ऋषियों ने भी नदी को आह्वान किया तो चार ऋषियों के लिए एक एक शाखा प्रकट हो गई। उसका नाम क्या है? ब्रह्मी भारती, हिरण्य, वज्र के लिए वज्रिणी और नयंक के लिए नयंक कपिला और पांचवी सरस्वती। ऐसे पांच नदी का पांच स्रोत वहां एक साथ प्रकट हो गए। उसके साथ में सामने समुद्र आके खड़े हो गए ऐसे प्रेम से, और उधर ही उनका मिलन हुआ जहां प्रकट हो गए। तो उस जगह को पंच स्रोत कहते हैं या पंच नदस तीर्थ कहते हैं। एक और नाम है प्रवास क्षेत्र का। तो वहां पर चार ऋषियों ने स्नान किया उसके अंदर और वहां पर बैठ के भजन किया। इस प्रभास क्षेत्र में वैशाख चतुर्दशी के दिन, यानी कि नरसिंह भगवान का जो अवतार दिन है ना, नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन विश्व के जितने तीर्थ हैं वो सब प्रभास क्षेत्र में आश्रय लेते हैं और इस पंचनद में स्नान करते हैं खुद की पवित्रता के लिए। इसके पूर्व भाग में सूर्य नारायण है, पश्चिम में माधव है, दक्षिण में सागर है और उत्तर में अंबिका देवी है स्कंद पुराण के अनुसार। ये 12 योजन लंबा चौड़ा क्षेत्र है और ये पाप ताप नाशक तीर्थ है। इसमें त्रिदेवत्व भी है, यानी कि तीन देवताओं का भी इसमें निवास है। कैसे? 24 भक्ति के तत्वों के साथ में बाल रूप में यहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं, 25 भक्ति के तत्व के साथ यहां विष्णु निवास करते हैं और 36 तत्वों का स्वामी बनकर यहां पर सोमनाथ जी महादेव यहां निवास करते हैं, अंबिका के साथ में निवास करते हैं। प्रभास के पार्श्व भाग में ब्रह्मा पृथ्वी तत्व के आश्रय में रहते हैं, जल के आश्रय में विष्णु भगवान रहते हैं, जनार्दन उनका नाम है। जैसे कि पांच तत्व है ना पंच महाभूत, कौन से है? पृथ्वी है, जल है, वायु है, तेज है, आकाश है और क्या है? अग्नि। तो पृथ्वी यानी कि पार्थिवता में ब्रह्म रहते हैं पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में विष्णु रहते हैं। ऐसे कहा गया है कि भगवान ने ये क्षेत्र ही क्यों चुना, क्योंकि ये क्षेत्र में स्वयं विष्णु जो है वो जल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु को जल बहुत प्रिय है। आप देखिए, कारण उदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीर उदकशायी विष्णु, हाँ यहाँ पर भी जल से प्रकट हुए थे, है ना? मैंने आपको बताया ना कथा, पहले चक्र प्रकट हुए फिर भगवान प्रकट हुए, तो भगवान को जल तत्व बड़ा प्रिय है। तेज भाग में यहाँ पर शंकर रहते हैं, तेज यानी तेज तत्व में। वायु तत्व में कुबेर जी रहते हैं और अवकाश तत्व में सदाशिव भगवान जो विष्णु का एक रूप है वो यहाँ पर स्थित है। तो ये पंच तत्वों का यहाँ पर निवास है, यही इसका महात्म्य का सूचक है। और तत्र देवो लयम याति हरिर्जन्म जन्मानि च सवासुदेवः सूक्ष्मात्मा परात् परतरे स्थितः। हर एक अवतार में जब भगवान हरि जन्म लेते हैं पृथ्वी पर या किसी लोक पर, इसी क्षेत्र में आकर अपना देह त्याग करते हैं। बस तत्र देवो लयम याति हरिर जन्म जन्मनि, हर एक जन्म में यहां पर भगवान यहां से ही गमन करते हैं और शेषनाग यहां पर भगवान के साथ में निश्चित रूप में निवास करते हैं। अभी मैं इसका महात्म्य आपको पढ़ के सुनाऊंगा, शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं। पुण्य क्षेत्रों में अत्यंत गोपनीय क्षेत्र ये मेरा प्राण प्रिय है, ऐसे त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? जिसकी निर्मल कीर्ति का गान स्वयं भगवान शिव करते हैं, ऐसा ये अद्भुत क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र। भगवान शिव कहते हैं, देवी हे पार्वती, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे अति विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ, वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की दृष्टि में जो इच्छा ज्ञान और क्रिया से निर्माण होता है वो मेरे इस दिव्य लिंग से प्रकट हुआ है। ये चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता है। हे मेरे प्रिय पत्नी, प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है उसके क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूं, जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं उन्हीं को मेरे इस लिंग का तत्व का ज्ञान है। मतलब जो शिव के भक्त हैं, जो शिवजी को मानते हैं, हाँ शिवजी के भक्त मतलब वो नहीं काम वासना वाले भक्त नहीं, जो शिवजी पर वैष्णव के रूप में श्रद्धा रखते हैं, भगवान के भक्त के रूप में, उन्हीं को इस तत्व का ज्ञान है। हे देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं उन सब में प्रभास क्षेत्र मुझे सबसे प्रिय है, ऐसे शिवजी बताते हैं। आगे बताता हूं आपको। मैंने आपको बताया कि चंद्रमा ने यहां पर आके शिवजी की सेवा किया और शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया और ठीक किया, तो उसके बाद में क्या हुआ, शिवजी ने उनको वरदान दिया। उन्होंने क्या किया कि शिवजी को जब पूजन किया उनका, तो शिवजी स्वयं प्रकट हो गए और फिर शिवजी के संवाद हुआ उनका, तो शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने मुझे यहां स्थापन किया है इसलिए मैं सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। सोम यानी मतलब क्या है, चंद्र देवता, या तो सोमनाथ या सोमेश्वर महादेव के रूप में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा। जो लोग यहां पर आएंगे दर्शन करेंगे वो मेरी पूजा करेंगे, वो रोग दरिद्रता दुर्गति और सब कुछ जो बुरी चीजें हैं वो सबसे मुक्त हो जाएंगे। मेरे धाम में, मेरे प्रभास क्षेत्र में, सोमनाथ क्षेत्र में एक एक कदम चलने पर कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ का लाभ होगा। चैत्र आषाढ़ कार्तिक और फाल्गुन की पूर्णिमा में मेरी विशेष पूजा की जाएगी। सरस्वती नदी का स्नान, समुद्र का संबंध यानी कि स्नान आचमन, सोमवार का दिन, चंद्र ग्रहण का दिन, सोम ग्रहण मतलब स, और सोमनाथ दर्शन, ये अगर पांचों चीज एक दिन में किसी के जीवन में आती है तो परम भाग्यशाली होगा। क्या क्या बताया मैंने आपको, सरस्वती नदी, हाँ उसका स्नान, समुद्र का, इसी समुद्र का स्पर्श या स्नान, सोमवार का दिन, सोम ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण का दिन, और सोमनाथ का दर्शन। अगर किसी व्यक्ति को एक ही दिन में हो गया सब कुछ, एक ही समय में आ गया सब कुछ, वो अपूर्व पंचकार सक योग कहते हैं उसको, बड़ा भाग्यशाली होगा ऐसे उन्होंने बताया। सोमदेव यहाँ पर टीबी रोग से मुक्त हो गए, तो उन्होंने पूर्ण कला प्राप्त किया, अपना पूरा आकार प्राप्त किया, पूरा गौरव प्राप्त किया, तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया प्रेम से और सोमनाथ जी का लिंग स्थापन किया और सोमनाथ जी के लिए विशाल मंदिर बनाया। इतना विशाल सुंदर मंदिर बनाया कि आज भी भारत के इतिहास में ये मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। और क्या क्या किया उसने, उन्होंने अन्य 26 मंदिर बनाए और अपने जो पूजनीय देवता है, ब्रह्मा जी है और वरुण देव है, इंद्रदेव है, इन सब के लिए यहाँ पर उन्होंने अपना एक एक मंदिर बनाया। तो सोमनाथ जी का मंदिर अकेला मंदिर नहीं है, उसके आसपास छोटे मोटे बहुत मंदिर है जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को एक एक घर बना के दिया, इतने पवित्र क्षेत्र में रहकर भजन करने के लिए। और क्या किया, ये सब कब हुआ, हमारा जो अभी चल रहा है ना वो विवस्वान मनु का मनवंतर चल रहा है, ये बड़ा लंबा कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। एनीवेज 14 प्रकार के मनु होते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, और एक एक मनु का ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में 1/14 हिस्सा आता है उनके हिस्से में। ब्रह्मा जी का एक विशेष लंबा काल है, वो 14 भाग में अगर विभाजित किया गया तो जो भाग बचता है समय का वो एक मनु के हिस्से में आता है, मनु उसके राजा बन जाते हैं उस समय के। तो कई प्रकार के मनु हैं, स्वरोचस मनु है, स्वयंभू मनु है, चक्षुषा मनु है, वैवस्वत मनु है, ऐसे कई मनु हैं। मनु ये पोस्ट है, हाँ मनु व्यक्ति मतलब मनु एक पोस्ट है, जैसे कि डायरेक्टर है, प्रधानमंत्री का एक पोस्ट होता है, उसमें व्यक्ति आ जाते हैं, उस तरह से मनु पोस्ट में कभी सूर्य का पुत्र आता है तो उसको वैवस्वत मनु कहते हैं, जब ब्रह्मा का पुत्र आता है तो स्वयंभू मनु कहते हैं उसको, हाँ स्वयंभू का पुत्र स्वयंभू मनु, इस तरह से 14 मनु हैं। तो ये वैवस्वत मनु यानी विवस्वान सूर्यदेव के पुत्र के मनु जब राज्य कर रहे हैं, अभी उनका राज्य चल रहा है, उनके एक 4 युग का एक कल्प बनता है, पता है ना आपको, बताया ना मैंने उस दिन आपको, सत्य त्रेता द्वापर कली का मिलकर एक कल्प बनता है। तो उनके राज्य के, जब उनका राज्य चल रहा था तो दशम कल्प जब आया, तो दशम कल्प में जब त्रेता युग आया, तो उस त्रेता युग में सोमदेव को शाप मिला, उन्होंने तपस्या किया, सोमदेव को भगवान ने दर्शन दिया शिव जी ने, और ये सोमनाथ जी का लिंग स्थापन किया गया, ये उसका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है। साथ में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी नगर बसाया और पूजा अर्चा भोजन की व्यवस्था किया ब्राह्मणों के लिए। तो आचार्य कहते हैं सर्वे सुखिना भवंतु सर्वे संतु निरामया, ऐसे भाव में चंद्र देवता ने यहाँ पर सोमनाथ में सारी सुंदर व्यवस्था करके रखी है, ताकि हम जैसे भक्त लोग वहाँ पर जाए, सोमनाथ जी का दर्शन करें, सारी दुर्गति दुर्मति पाप भावना भ्रष्ट बुद्धि से मुक्त हो जाएं, हाँ, और एक ही चीज मांगे उनके पास जाके, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छे धन दौलत मत मांगना वहां जाकर, एक ही चीज मांगना, जिनके चरणों की आराधना वे स्वयं करते हैं उन चरणों की भक्ति की मांगना उनके साथ जाकर, वो दे सकते हैं आपको, पूरे अधिकारी हैं उसके देने के, लोग मांगते नहीं उनसे, इसलिए वो खुद भी परेशान रहते हैं। कौन कौन उनके पास आते हैं मालूम है आपको? रावण, हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण, इतने भयंकर राक्षस, भस्मासुर, इतने भयंकर लोग आते हैं उनके पास, क्या मांगते हैं? बोले जो हाथ लगाऊंगा इसका सर कटना चाहिए, जिसको हाथ लगाऊंगा उसका भस्म बनना चाहिए ताकि भस्म में आपको अर्पण कर सकूं, ऐसे कुछ अजीब सी चीजें मांगते हैं उनसे। और जब भस्मासुर वो अपना क्या नाम था उसका, भूल गया मैं उसका, वो उसने मांगा कि मैं जिसको हाथ लगाऊंगा उसका सर कटना चाहिए, तो भगवान ने कहा तथास्तु, थोड़े पहले आपके सर को हाथ लगाता हूँ। भस्मासुर अलग था, भस्मासुर वो भस्म के लिए मांगा था उसने, ये कुछ अलग था। तो बोलता है मुझे असली में मुझे आपको नहीं चाहता था मैं, मुझे पार्वती पत्नी के रूप में चाहिए थी, इसलिए मैंने आपका भजन किया। तो इसलिए जब आपका सर पे हाथ लगाऊंगा तो आपका सर गिर जाएगा, तो पार्वती मेरी हो जाएगी। तो शिव जी भागने लगे, अरे बाप रे ये कैसा भक्त निकला मेरा, तो भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, तो सब जगह भाग रहे, वो ये पीछे भाग रहे हाथ लगाने के लिए। तो फिर उन्होंने भगवान को पुकारा, विष्णु को, तो विष्णु एक बालक ब्राह्मण बनकर आए, अरे बोले कहाँ भाग रहे हो तुम? बोले देखो शिव जी को हाथ लगाने भाग रहा हूँ मैं, उनको हाथ लगाऊंगा, उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो बोले पगले, ये शिवजी रहते हैं कहाँ मालूम है आपको? स्मशान में रहते हैं, भूत प्रेत के बीच में रहते हैं, उनकी मामती मारी जाती है हमेशा, इनका वरदान वरदान सच नहीं होता है, तुम पागल हो? देखो देखो अपने हाथ पे सर पे हाथ पे लगाओ, देखो कुछ नहीं होगा। ये विष्णु का संभाषण ना बहुत सम्मोहिनी होता है, सम्मोहिनी मतलब जब बोलते हैं ना, मेस्मराइजिंग हिप्नोटाइजिंग स्पेल आता है आपके ऊपर, तो ऐसे बातों में घुमाया उसको, तो उसने सर पे हाथ लगाया, वो सर कट के गिर गया, और शिव जी महाराज ने आके धन्यवाद दिया, थैंक यू वेरी मच भगवान ने, आपने हमेशा मुझे बचाया, आज भी बचाया, थैंक यू वेरी मच। जब रावण का मृत्यु हो रही थी तो पार्वती भाग के गई शिव जी के पास, अरे आपके भक्त का वध हो रहा है। तो शिव जी क्या बोले, अरे जिनको राम मारना चाहते उसको कौन बचा सकता है, जिनको भगवान बचाना चाहते उसको कौन मार सकता है, इसको भगवान राम बाण लेके खड़े मारने के लिए, मैं कौन होता हूं उनको बचाने वाला, मरने दो, मरने लायक ही है वो। उसका भाग्य है कि वो भगवान के हाथ से मर रहा है, कोई ऐर गैर आदमी उसको नहीं मार रहा है। ये परम भक्त है भगवान के, वैष्णवानान यथा शंभु, परम भक्त है भगवान के, और सबको भक्ति देने वाले हैं वो, दे सकते हैं लेकिन मांगने वाला कोई नहीं है। तो आप ऐसे भाग्यवान जीवों में से एक हो जो आप जाएंगे बोलेंगे भगवान, हे शंकर भगवान, आपके धाम में आने से हमारी दुर्गति दुर्मति सब नष्ट हो जाएगी, रोग दारिद्र नष्ट हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन उससे अधिक हमको आप भगवान के भक्तों की चरणों की भक्ति देना, भगवान के भक्तों का संग देना, हमेशा अच्छे रास्ते पर रखना, भगवान के रास्ते पर रखना, और जब तक जीवन है उनकी स्मृति में हमारा जीवन जाना चाहिए। अरे वो स्वयं हाँ चिरंतन काल तक हर एक क्षण भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, कैलाश में ऐसा सन्यासी बनकर रहते हैं, वो कोई आसक्ति नहीं उनके मन में, सब कुछ दे सकते हैं वो। ये दक्ष राजा की कन्या थी सती, वो उनपे प्रेम करती है, चिरंतन पत्नी है उनकी, वो दक्ष राजा की कन्या बनकर आई, 11 कन्याएं थी, 10 कन्याओं का उन्होंने ऋषियों के साथ शादी किया, लेकिन ये लड़की मानने को तैयार नहीं कि मैं उसके साथ शादी करूंगी, बड़े नाराज हो गए वो, क्योंकि वो फकीर है ना, वो राख लगाते हैं, भूत प्रेत घूमते हैं उनके साथ में, कौन शादी करेगा, और दक्ष प्रजापति तो प्रजापति है, बड़ा अधिकारी व्यक्ति है, मान सम्माननीय व्यक्ति है, उसको अपने इक्वल का जमाई चाहिए, तो ये नहीं थे, तो उन्होंने अपनी लड़की को ही त्याग कर दिया, बोला नहीं चाहिए तुम, आई डोंट एक्सेप्ट यू एज माई डॉटर, चले जाओ यहाँ से, चली गई वो, कुछ घर नहीं दार नहीं कुछ नहीं, वो कैलाश में एक बड़ा पेड़ है बरगद का, उसके नीचे बैठे महाराज जी राख लगाकर उनकी सेवा कर रही है। तो एक दिन बोले महाराज जी कुछ घर वर तो होना चाहिए, हम तो गृहस्थी है, तो आपको लगता है कि शिव जी का कुछ भी नहीं है, फकीर बनकर रहते हैं, ऐसा तुरंत ऐसे हवा में एक महल खड़ा कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा महल
इंद्र भी एकदम हैरान हो गए देख के उसको, इतना ऐश्वर्य संपन्न, इतने कमरे, इतने बगीचे, इतने नदियां, पर्वत से समृद्ध आकर्षक, ऐसा हवा में बना दिया उन्होंने। तो पार्वती तो अन्नपूर्णा देवी है, उन्होंने कहा कि अरे इतना बड़ा घर, क्या गृह प्रवेश तो करना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए उसका। तो ब्राह्मणों को बुलाया, गृह प्रवेश का यज्ञ किया उसने अंदर, और क्या मेहमान कौन है इनके, इतने महान व्यक्ति के मेहमान कितने महान होंगे, सारे ऋषि, सप्त ऋषि, सारे देवता, जितने भी भगवान के अवतार, सब लोग आ गए उनके घर पे भोजन करने के लिए। और फिर गृह प्रवेश किया, अच्छा यज्ञ संपन्न हो गया, फिर क्या होता है, गृहस्थों को क्या करना पड़ता है, दान देना पड़ता है, ब्राह्मणों को भेंट देनी पड़ती है। तो लाइन लग गई सब लोग, शिव जी सबको दे रहे, देते जा रहे हैं धना धन, जितना भी ऐश्वर्य सबको लुटा रहे हैं। एक ब्राह्मण आया, बोला ये तुम्हारा महल मुझे दे दो। तो बोले तथास्तु तथास्तु, दे दिया महल, दे दिया, फिर जाके पेट के नीचे बैठ गए। ऐसे विरक्त हमारे शिव जी महाराज, हाँ कर बहुत सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, अरे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र की पूजा करते हैं, इसलिए महादेव के नाम से प्रसिद्ध है ये। हम भी हमारे मेडिकल में पहले इनकी पूजा करते थे, हर सोमवार को उनको अभिषेक करते थे। बोले फर्स्ट एमबीबीएस में अच्छा मार्क मिलना चाहिए, इतनी बड़ी परीक्षा तो ट्वेल्थ की भी नहीं थी, इतने बड़े बड़े किताब तो पहले के उठाए नहीं थे हमने, पढ़ने की बात तो दूर। तो एकदम टेंशन आया था पहले एमबीबीएस के एग्जाम में, रोज जाकर सोमवार को अभिषेक करते थे। हमारे पुर्तगीज चर्च के पास में वो शिवलिंग है अभी भी, उसको अभिषेक करते थे, बहुत भक्तिभाव से बोलते थे उनको, मतलब भक्ति मतलब वही अपना काम है, इससे इतना एक कृतज्ञ ना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, शिव जी पर कुछ नहीं था, आपको मार्क चाहिए थे बस। तो क्या चमत्कार देखिए, फर्स्ट क्लास से फर्स्ट एमबीबीएस क्लियर किया हमने, पढ़ाई नहीं किया था कुछ ज्यादा, लेकिन फिर भी। तो फिर उसके बाद में अगला सोमवार आया एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, अभी एग्जाम के बाद भी दूध चलता रहा क्योंकि तो बाकी है ना रिजल्ट। तो रिजल्ट लग गया, खुश हो गए हम। उसके अगला सोमवार आया तो फिर गए उधर, तो धन्यवाद देना चाहिए ना, अभी थैंक यू तो बोलना चाहिए, तो फिर अभिषेक किया, थैंक यू वेरी मच। फिर अगला सोमवार आया, पता नहीं अच्छे संस्कार थे हमारे पिताजी की वजह से, दोबारा गए, बोले गए अभी तो मांगने के लिए तो अभी इमीडिएटली कुछ है नहीं। लेकिन मन में ऋणी भाव तो है कि इन्होंने हमको इज्जत बचाई हमारी, हाँ हम तो रैंक होल्डर थे एसएससी में, लेकिन एमबीबीएस में पढ़ाई नहीं किया था, अभी फिर भी बच गए, अच्छी तरह से पास होके निकल गए। तो अभी क्या करें, दूध तो अर्पण किया, अभी क्या मांगे। तो पता नहीं भगवान ने ऐसे हमको बुद्धि दी, हमने कहा शिवजी महाराज हमारे लिए जो अच्छा होगा वो करो आप, वॉट एवर इज गुड फॉर मी यू प्लीज डू। 3 महीने में हम हरे कृष्ण मंदिर में पहुंचे, 3 महीने में। कुछ लोगों को लगेगा गलत जगह पहुंचे। हमारे माता पिता को लगा कहाँ गया मेरा लड़का, माता पिता परेशान हो गए हमारे, तो भाई बंधु परेशान हो गए कि भयक गया ये लड़का, अच्छा लड़का था, अच्छा पढ़ाई करता था, डॉक्टर बना, लेकिन गया हरे कृष्णा के विदेशियों के मंदिर में गया। क्या हमारे जाति में कोई गुरु नहीं है क्या, ऐसे हमारे घर में इतना आतंक मच गया। लेकिन मैं, मेरे हृदय में ये अनुभूति साक्षात्कार है आज भी कि शिव जी की कृपा से ही मैं भक्ति में आया, और जितना मुझे शिव जी के बारे में ज्ञान था, श्रद्धा थी, उससे हजारों गुना अधिक श्रद्धा मुझे आज है शिव जी में, क्योंकि शिव जी कौन है इसका सच्चा ज्ञान मुझे भक्ति में आने के बाद मिला, कृष्ण भगवान की कृपा से, उनका नाम लेने से मिला। आज हम शिव जी को देवता के रूप में नहीं जानते हैं, एक महान महादेव भग वैष्णव के रूप में जानते हैं, अब ऐसा हमारा संबंध है उनसे। जिस भावना से उनको मत्था टेकते थे, दूध चढ़ाते थे, उससे हजारों अधिक गुना भावना से आज मत्था टेकते उनके सामने, ये सब कृष्ण भक्ति का परिणाम है। और कृष्ण और शिव जी के बीच में इतने सुंदर लीलाएं हैं, कभी आपको और बताएंगे समय मिलेगा तो, इतने सुंदर लीलाएं हैं कि आपको लगेगा कितना प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण शिव जी पर, और कितना शिव जी भगवान पर प्रेम करते हैं, ये समझने के लिए शिव जी हैं। ये नहीं कि क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, और क्या क्या शक्तियां, और कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, सोमवार को करना चाहिए कि शुक्रवार को करना चाहिए, ये सब तो दुनियादारी की बातें, सब नश्वर चीजें हैं। हाँ तो एनीवेज, तो आप सबको कल सोमनाथ जी जाना है। सोमनाथ जी बड़ा पवित्र स्थान है, ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ज्योति के रूप में जो लिंग प्रकट हुए हैं उनमें से एक लिंग सोमनाथ है, उसको 12वां लिंग कहते हैं। वैसे केदारनाथ जी भी है, परली वैजनाथ भी है, और त्र्यंबकेश्वर में जो भगवान महादेव जी हैं वो भी ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। ये शिव जी के बड़े विशेष स्वरूप हैं,
और ब्रज में भी शिव जी के बड़े विशेष लिंग हैं, भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, ब्रजेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव, ऐसे अलग अलग दिव्य रूप में भी भगवान भगवान के धाम में विराजमान है। शिव जी और पार्वती जी ये एक ऐसे ही जोड़ी है देवताओं की, केवल इनको ही ब्रज में चिरंतन निवास करने का अधिकार प्राप्त है, बाकी सब देवता आना जाना, कम एंड गो, नो नाइट स्टे। केवल गणेश जी हैं जिनको काम्यवन में एक लीला हुई थी, उसमें उनको काम्यवन में निवास दिया भगवान ने। तो एक गणेश जी को एक जगह पर और शंकर पार्वती को सब जगह पर जहां चाहिए वहां पर, और बाकी किसी को भी नहीं। इतने महान देवता हैं, भगवान के इतने प्रिय हैं। तो आइए हम कल सुबह उठकर वहां जाते हैं और दर्शन करते हैं उनका, और याद करना बार बार, लिस्ट लेके मत जाना, एक कॉमन, सबका एक ही मांग होनी चाहिए, भक्ति भक्ति और भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, मेरे इस आतंक को आपने बहुत दिन तक सहन किया है, और शिव जी आपको इस आतंक से मुक्त करेंगे कल। हरे कृष्णा। रुको रुको, अनाउंसमेंट है।